Questo da rivedere proprio, niente stare da prima. Vai a vedere anche solo per rivedere. Questa è la prima di all'anno di lei. Masciarla. Ma te la so mai che lo so per chi è. अभी हजरत आएंगे उस पर बैठेंगे इसलिए आप हजरत थोड़ी सी उनके लिए जगह छोड़ दें हमें थोड़ी सी वो हजरत अभी आएंगे इस पर बैठेंगे थोड़ी जगह उनके लिए छोड़ दें क्या हाल है आप हजरत सब खैरियत से हैं तो आपने ठंडी को भी इज्तिमा में दावत दी थी यूं ठंडी को भी बुलाया था अच्छा ये कह रहे हैं आपकी बरकत से आ गई अच्छा अच्छा इसलिए आ गई ताकि तुम मिल मिलकर बैठो फैल कर रहे बैठो यू अल्लाह सबको खुश रखे सलामत रखे بسم الله الرحمن الرحيم نحمده صلى الله عليه وسلم الكريم وبعد میرے عزیز و بھائیو دوستو اور بزرگو ہمارے اجتماع میں ہر سال ایک مجلس ہوتی ہے مقامی اعمال کی کیفیت کے پوچھنے کی ایک مجلس ہوتی ہے ظہر کے بعد اجتماع کے دوسرے دن مقامی اعمال کے کرنے کی ترغیب کی اس کے نفع کہ ہم کیوں مقامی اعمال کریں گے اور یہ مجلس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے میں کیسے کریں گے بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے زیادہ وقت سفر میں نہیں گزارتا زیادہ وقت اپنے مقام پر گزارتا ہے آدمی عمومی طور پر اللہ کے راستے میں جب جاتا ہے تو دین پر چلنے کی فکر کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر آ جاتی ہے اور الحمدللہ نکلنے والے کی زندگی پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ آدمی ایک دم نمازوں کا پابند بن جاتا ہے رات کو اٹھنے والا بن جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں دینی زندگی اس کو مل جاتی ہے جب اس کی واپسی ہوتی ہے تو وہ اسی جذبے کے ساتھ واپس لوٹتا ہے کہ اب مجھے میری باقی زندگی دین کے ساتھ گزارنی ہے یہ جذبے کے ساتھ لوٹتا ہے ہو گیا اکثر اس جذبے کے ساتھ لوٹتا ہے اور الحمدللہ ہمارا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو آنے کے بعد اس پر جم بھی جاتا ہے لیکن اگر دیکھنے جائیں تو زیادہ تر مجموعہ وہ ہوتا ہے جو کم جم پاتا ہے ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے ان ساتھیوں کے اتنی اچھی نیتوں کے ساتھ اتنی اچھی جذبات اور فکروں کے ساتھ وہ لوٹتے ہیں اس کے باوجود وہ کیوں نہیں جم پاتے اکثر غور کرو گے تو بات ہی ملے گی یا تو جس جگہ پر وہ لوٹ کر آئے ہیں وہاں اعمال ہی نہیں ہے جو ان کو سنبھال لیں ان کی مسجدوں میں اعمال نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ ہے وہاں ماحول نہیں ہے جب ماحول نہیں ہوتا تو آدمی ٹک نہیں پاتا ماحول نہیں ہوتا تو آدمی ٹک نہیں پاتا آدمی کو بہت مرتبہ ماحول ٹکا رہتا ہے یا بعض مسجدوں میں کام ہوتا ہے تو کام تو ساتھیوں سے ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے تعاون سے ایک دوسرے کو سہارا مل جاتا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا وہ اسلام میں داخل ہوا ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے اور ساتھیوں سے کیسا سہارا ملتا ہے دونوں اس واقعے میں ماحول کا اثر اور دوسرا ساتھیوں سے ایک دوسرے کو سہارا کیسے ملتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ صحابی اسلام میں داخل ہو گئے, ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. ان کی والدہ نے جب محسوس کیا کہ میرا بیٹا وہاں چلا گیا تو اس نے قسم کھا لی, اس نے قسم یہ کہی کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی, جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا تب تک میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گی, اور جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آئے گا تب تک میں دھوپ میں سے چھاؤں میں نہیں جاؤں گی. بھاری قسمیں کھا لی. تو وہ دھوپ میں کھڑی ہو گئی بھوکی اور پیاسی. ان کے رشتے دار جو تھے وہ ان کے بیٹے کے پاس مدینہ منورہ گئے دو آدمی, اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے تو ایسی ایسی قسمیں کھائی ہے, آپ واپس چلو, اگر تم نہیں آئے اور تمہاری ماں اس حال میں مت گئی تو زندگی بھر لوگ تمہیں ماں کا مارنے والا تانا دیں گے, ماں کا قاتل, ماں کا مارنے والا زندگی بھر تمہارے سر آئے گئے. تو انہوں نے ماں کی ایسی باتیں ان کو سنائی کہ ان کے لیے دل نرم ہو گیا, وہ آدمی کا دل نرم ہو گیا. انہوں نے نیت کی کہ ٹھیک ہے میں چلو ماں سے ملنے آ جاتا ہوں, دیکھ لیتا ہوں کیا حال ہے. وہ ماں سے ملنے کے لیے جا رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس طرح سے ہمارا ساتھی وہ جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم وہاں مت جاؤ, یہیں رہو. تو کہنے لگے بھائی میری ماں نے ایسی قسم کھائی ہے تو میں ذرا جا کر آ جاتا ہوں. بعد عمر کہنے لگے کہ بھائی انسان برداشت نہیں کر پاتا, بھوک لگے گی تو وہ کھا لے گی, دھوپ لگے گی تو چھاؤں میں چلی جائے گی, اور سر میں جوئیں پڑے گی تو تیل بھی لگا لے گی, آپ بن جاؤ. لیکن وہ دونوں نے اتنی محنت کی تھی کہ وہ تیار ہو گئے اور جانے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تلوار ہدیے میں دی, یہ لے جاؤ کام آئے گی. تو کہنے لگے ماں سے ملنے جانا ہے تو اس میں تلوار کو کیا کروں, کام آئے گی. وہ لے کر گئے. راستے میں ان دونوں نے, وہ تو کفر پر تھے, ان دونوں نے وہ جو تلوار تھی اس کی تعریف کرنا شروع ہوا, تمہاری تلوار ایسی تیسی تعریف کرنا شروع کی, اور ان سے دیکھنے کے لیے مانگی. جیسی انہوں نے لی تو اس تلوار کو انہوں نے ختم کر دیا. تو کہنے لگا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہی ہوگا. اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے کہ اب تم ویسے ہی ہم کو لے جانا ہے, سواری پر لاد کر ہاتھ باندھ دیے ان کے. تو جب وہ وہاں پہنچے اسی حال میں ان کو خوب ٹارچر کیا. انہوں نے اپنے والدہ کے حالات دیکھے تو متاثر ہو گئے, حالات سے متاثر ہونا, ماحول سے متاثر ہونا, اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی ماں کے کہے میں آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا دین چھوڑ دیا. یہ ماحول کا اثر. اس پر سے کہتے ہیں کہ غیر ایمان والا کبھی بھی دوست ایمان والے کا نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ غرض کا دوست ہوتا ہے, غرض کا. جس دن اس سے ہماری غرض پوری نہیں ہوگی اس دن اس کو جو کر رہا ہوگا کر لے گا. اس لیے حکم ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ. ان کو دوست ایمان والا ایمان والوں کو دوست بنائے گا. تو یہ ماحول کا اثر ہوا کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا. یہ تو ماحول کا اثر, کیسا آدمی جو حضور کے ساتھ رہتا تھا اس کو ماحول نے اتنا اثر کیا. ماحول سب پر اثر کرتا ہے. دوسرا, ساتھی سے ساتھی کو طاقت ملتی ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایسا ہو گیا تو انہوں نے ایک آیت لکھ کر بھیجی. وہ آیت کا مفہوم یہ تھا کہ جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے وہ اللہ سے نا امید نہ ہوں. یہ آیت لکھ کر ان کو بھیجی خط. وہ صحابی فرمانے لگے کہ میں کئی دن تک اس کاغذ کو پڑھتا تھا کہ عمر کیا کہنا چاہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آیا. کافی دنوں کے بعد اللہ نے میرے دل کو مطمئن کر دیا اور میں جلدی سے وہاں سے چلا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر پھر مسلمان ہو گئے. अल्लाह ने हिफाजत कर ली, ये साथी साथी का सहारा बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया बोलो। बनी इसराइल में न बोलने का एक रोजा होता था, पता है आपको, क्या बोलूंगा नहीं मैं, उसका रोजा होता था। तो वो यहाँ भी होता है, अरे बोलो भाई, न बोलने का रोजा यहाँ भी होता है। तो सब ऊपर आ जाओ, यहाँ जाओ, न बोलने का रोजा रखा है आप लोगों ने। हाँ भाई, तो एक वाक्य में ये तीन चीजें हो गई, एक वाक्य में कितनी चीजें हो गई। आगे आकर बैठो ताकि पीछे वालों को आसानी हो जाए। एक वाक्य में कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें। पहला वाक्य, पहले क्या चीज हो गई कि आदमी पर माहौल कैसा असर करता है, एक। दूसरा, गैर ईमान वाला ईमान वाले का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, दो। और तीसरा, साथी के जरिए से साथी को कैसे सहारा मिलता है, वो। एक वाक्य में तीन चीजें हो गई, है ना। उनका नाम था अय्याश, उनके साथ ये वाक्य पेश आया। तो आदमी को माहौल से बड़ा सहारा मिलता है अगर उस जगह पर माहौल है तो, या फिर उस जगह पर काम करने वाला अमला है तो एक दूसरे के साथ जोड़कर उसको ताकत मिल जाती है। हम देखें कि हमारा बहुत बड़ा मजमा वो होता है जो अल्लाह के रास्ते में जाता है, बहुत अच्छे जज्बे से, बहुत अच्छे नियत से वापस लौटता है, लेकिन बहुत कम मजमा टिक पाता है। आप देख लो, अपने मस्जिद में सर्वे करो, किसी मस्जिद में इतने चार महीने वाले, इतने चलने वाले, और वो टिक नहीं पाए। भाई सरफ भी है कुछ, यहाँ जाओ इस तरफ, अरे भाई यहाँ जाओ इस तरफ, तो अक्सर कम टिक पाते हैं। आप देखो गौर करोगे तो उसकी वजह ये होती है कि वो जमातों में से जब आते हैं तो बहुत अच्छे जज्बात के साथ, बहुत अच्छे नियत के साथ आते हैं, लेकिन या तो उनको माहौल नहीं मिलता या फिर साथी नहीं मिलते, वो टिक नहीं पाते हैं। ये जो हमारे मकामी काम का मुलाकरा होता है ना, उसी के लिए इस मकामी काम में अल्लाह ने तासीर रखी है, उससे साथी बनते हैं। क्या बनते हैं बोलो, और उससे माहौल भी बनता है, माहौल भी बन जाता है, साथी भी बन जाते हैं। तो उसकी बरकत से हम भी संभल जाते हैं, हम अपने साथियों के साथ जुड़ गए और माहौल बन जाता है तो हमें चलना में तावन मिलता है। इसके लिए हमारे हजरत ये चाहते हैं कि ये हमारे मकामी अमाल जो हैं वो वजूद में भी आए और अच्छे से अच्छे आए, ताकि अल्लाह के रास्ते में वापस आने वाला मजमा उनको अपने अपने बस्तियों में सहारा मिल जाए, और हर जगह मस्जिदवार जमात बने ताकि उसके जरिए से अपने मकाम पर अच्छा ही एक फिजा बने, अच्छा एक माहौल बन जाए। ये पांचों अमल ऐसे हैं, हमारे शेख साहब भोपाली ये कहते थे रहमतुल्लाह अलैह, अगर इसको ऐसे किया जाए जैसे करने को कहा तो आदमी की अपने जात से लेकर आदमी संभलेगा, उसका घर संभलता है, उसका मोहल्ला संभलेगा, उसका मोहल्ले का अतराफ संभलेगा, उसका जिला संभलेगा और पूरी दुनिया संभाल लेगा। ऐसी जोरदार, आदमी ने अपने आप को मजेदार जमात में जोड़ा तो खुद संभला, फिर उसके बाद घर में जो काम करने के हैं वो शुरू किया तो घर संभला, अपने मोहल्ले में रहता है मोहल्ले के काम शुरू किया तो मोहल्ला संभला, मोहल्ले का अतराफ दूसरे के से संभला, फिर अपने जिले के देहा तीन दिन से संभले, और फिर हमारा सूबा मुल्क और पूरा आलम चिल्ले चार महीनों से संभलेगा। ये कैसी चैन है, जबरदस्त चैन है, बशर्ते कि उसको ऐसे किया जाए जैसे इसको करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ आवाज लगते लगते एक दर्जे में एक वजह इसको करने वाला हो गया, लेकिन अभी दो चीजें हैं। अभी हमारे पास इलाके वो हैं जहाँ अभी करना शुरू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बोलो, शुरू नहीं हुआ। बाज इलाके वो है जहाँ शुरू तो हो गया मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है जैसा कहा जा रहा है, तो फिर उसके जरिए से वो नफे नहीं होते जो नफे होने चाहिए, वो नफा नहीं होता। भाई दो चीजें जरूरी है, क्वालिटी भी मेंटेन करो और क्वांटिटी भी। भाई फजर के दो पढ़ने तो दो ही पढ़ेंगे, डेढ़ नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी। तो इन अमल को जैसे करना है इसको एक पूरा करो, दूसरा फजर की जैसी पढ़नी है ऐसे पढ़ो तो नफा होगा। दो तो पढ़ी मगर ऐसे नहीं पढ़ी जैसी पढ़नी है, फायदा होगा। ऐसे ये अमल जो है वो भी पूरे हों, और ऐसे हों जैसे इसको पूरा करने को कहा, तो उसकी बड़ी जबरदस्त तासीर है। एक तो वो करने वाले को संभाला देती है और उसके जरिए से हर जगह पर माहौल बनता है, माहौल। और ये बड़ी बात है, हम बगैर ताउन के नहीं चल सकते, बगैर आवान अंसार के नहीं चल सकते। अकेले के कब तक टक्कर लेंगे? रमजान में सबके रोजे रखने का माहौल है तो हमारा भी रोजा आसान, लेकिन दो चार रोजे अगर कजा हो जाए तो साल भर कजा नहीं हो पाती। अरे तूने एक साथ 25-26 रोजे रखे, चार छोड़ गए थे, रख ले, अच्छा अभी बाद में रखता हूँ, अभी बाद में रखता हूँ, साल भर गुजर जाता है, चार रोजे नहीं हो पाते। बोले ऐसा होता ही नहीं होता। फर्ज नमाज सबके साथ पढ़ना आसान, और कजा हो जाए तो वो कभी टल जाती है। अमूमी फिजा होती है, उसमें काम करना आसान हो जाता है। तो ये मुबारक मेहनत से ये पाकीज़ा फिजा बनती है, जिसके जरिए से ईमान वाले का ईमान पर जमना आसान हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि इस मुबारक मेहनत के जरिए से उसके अंदर ताजगी आती रहती है। भाई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है ना, तो बड़ा काम क्या होता है पता है? वो अल्लाह को बोलता है, अल्लाह को सुनता है। और अल्लाह को बोलना और अल्लाह को सुनना ये अजीब गरीब अमल है। ये आदमी के अंदर ईमान पैदा करता है। क्या पैदा करता है? ईमान। दावत से ईमान बनता है। मौलाना इलियास साहब ये फरमाते थे कि लोगों ने इस मेहनत का नाम तबलीग रखा, अगर मैं इसका नाम रखता तो तहरीके ईमान रखता। अब वो जमात में से लौट कर आएगा तो दावत कब बोलेगा? जब वो नहीं बोलेगा तो उसके अंदर ज़ौफ आएगा। क्या आएगा बोलो? हज़रत माइले साहब का मलफूज है, वो फरमाते थे कि आदमी का ईमान ऐसे मैला हो जाता है जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं। मैले कपड़े उसमें बदबू नहीं आती? मैले कपड़ों में बदबू आती है। ऐसे जब ईमान वाले का ईमान मैला होता है तो उसमें बदबू आती। वो बदबू क्या होती है पता है? उसके कानों से गलत सुनना, उसको कोई परवाह नहीं होती। जबान से गलत बोलने पर उसको कोई एहसास नहीं, आंखों से गलत देखने पर कुछ नहीं। किताबों में था एक मोमिन से अगर गुनाह हो जाए तो वो ऐसे समझता है जैसे मेरे सर पर पहाड़ आ गया, जो भी गिरेगा। लेकिन इसके अंदर इसका कोई एहसास नहीं होता, तो मेला हो गया। जैसे जिस्म सुन मार जाए तो डॉक्टर चीर देता है तो भी पता नहीं चलता। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए चीरता है तो पहले क्या करता है? जिस्म को बेहोश कर देता है। और अगर जिसका जिस्म होश में हो तो जरा कांटा लगेगा, कांटा नहीं, जरा कंकड़ी चुभेगी तो एकदम हो जाएगा। क्यों? कि जिंदा जिस्म है। कैसा जिस्म है? और जिसके जिस्म पर फालच पड़ गया हो या जिसका जिस्म सुन मार गया हो तो वहां छुरी भी चला दो तो अरे बोलो जी एहसास नहीं होता, पता ही नहीं चलता। ऐसे जागरूक ईमान वाला बेदार मौज आदमी जरा गुस्से कुछ हो जाए एकदम, अच्छा मेरे से ये हो गया, जब तक तौबा नहीं करे चैन नहीं आएगी। लेकिन जब उसके अंदर मैल चढ़ जाए, गर्दा चढ़ जाए, तो गुनाह पर गुनाह किए जा, गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी मकामी अमल में चलता है तो उसको रोज अल्लाह को बोलने का मौका मिलता है, तो उसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर ये ताजगी आती रहती है। दूसरा, जिन जिन लोगों को वो समझाता है ना, वो समझाना बहुत बड़ा नफा देता है। एक तो अपने अंदर ताजगी आएगी, दूसरा हमारे समझाने से लोग दीनदार बनेंगे। और किताबों में आता है कि अगर तुम्हारे समझाने से कोई दीनदार बन गया तो तुम्हारे लिए सुर्ख होठों से बेहतर है। बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी कमाई है कि हमारे जरिए से लोग समझ जाए। कैसे कमाई है ये? एक हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि आदमी कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, हवा में उड़ता हो, मौत आती है उसका अपनी जाती नेकियों का दफ्तर बंद। एक सुभान अल्लाह का मोहताज। फिर ये फरमाया कि वो तो मोहताज हो गया, लेकिन इसका नाम अमाल, अगर उसने लोगों को खैर पर डाला है तो वो जितने लोगों को खैर पर डाला, वो जितने अमाल खैर करेंगे, इस डालने वाले के नाम अमल में रोज आता रहेगा। उसका तो बंद हो गया लेकिन लोगों के अमाल इसके नाम आए। और बाजे लोग वो होंगे जिन पर तुम्हारी मेहनत हुई, वो हमसे ज्यादा दुनिया में काम करेंगे। सो गए आप लोग? अरे भाई सो गए? मुंडे नीचे करके ना कह रहे हैं लोग। कौन कौन कह रहे हैं मैं देखा हूँ, वो दूसरों को देख रहे हैं पीछे में मुड़ कर। आप बात समझ रहे हैं? अच्छा अब जा गए। वो सोते भी हैं, फिर वो उठ कर कहते हैं कौन सोता है मैं जरा देख लूं। समझे बात आप? फिर पूछते सो गए तो सो मुंडी यही मिलाते नहीं नींद में नहीं सोया। आपको पता है एक बात क्या होती है पता है? आंखें बंद होती है तो क्या होता है पता है? कान भी बंद हो जाते हैं। क्या बंद हो जाते हैं? वो नबी होते हैं कि जिनकी आंखें बंद होती है कान और दिल बंद नहीं होता। समझे बात आप? क्या क्या समझे जी? क्या समझे आप? जरा बोलो तो सही जी। आंखें सोती है तो दिल जागता है किसका? अच्छा आप में से किसका किसका जागता है? तो हमारा भी दिल बंद हो जाता है तो इसको बंद नहीं होने देना है ना। तो इसी के लिए साल में एक बार हम बैठते हैं, साल में एक बार हम बैठते हैं इसलिए। तो आप हजरत इसको अपने सादत की चीज समझो। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह का फजल है, हम सब काम कर रहे हैं। तो अब काम करते करते हम इसको जखीरा समझे कि अगर हमारी एक फिर ये काम अच्छी शक्ल से वजूद में आ गया तो ये हमें भी संभाल लेगा और हमारे जरिए से औरों को संभालने का हम जरिया बन जाएंगे, जो हमारी बहुत बड़ी कमाई है। इसलिए यह मुजाकरा होता है क्योंकि शैतान जो है ना, पहले तो आदमी काम नहीं करने देता शैतान को, ये काम वाला नहीं बनने चाहिए। और अगर बन गया तो फिर कोशिश करेगा कि अच्छे से न करें ताकि इसका नफा ना हो। भाई नमाज पढ़ी लेकिन अच्छी नहीं पढ़ी तो जो नमाज अच्छी ना पढ़ी जाए उसका नफा होगा? अरे बोलो, जो नमाज अच्छी ना पढ़ी जाए उसका आसमानों पर ही नहीं जाएगी। तो ऐसे वो तबलीग वो अमल जो अच्छे नहीं किए जाएंगे तो न तबलीग करने वाले पर रंग चढ़ाएंगे न उसका असर माहौल पर होगा। अब इसके लिए देखें कि अभी हमारा मोहल्लों का माहौल नहीं बना। अरे भाई मोहल्ला तो दूर की बात, अभी तो हमारे घर का माहौल नहीं बना और हम 20-20 साल से तबलीग में हैं। हमारे घर वालों की सोच नहीं बदली, औरतों की सोच नहीं बदली। जब कोई मौका आता है ना तो 100% वो जो रिवाज होते हैं उसके ताबे हो जाते हैं, हमारी बात नहीं चलती उस वक्त। शादी घर में आने दो, शादी आती ही वो ये कहते देखो हमने साल भर तुम्हारी बात सुनी है, ये 2 दिन तुमको कुछ नहीं बोलने का। हाँ बोलो, औरतें ऐसा होती है नहीं होती कि हम साल भर तुम्हारी सारी बात सुनते हैं पर ये 2 दिन तो हमारी औरतों के दिल में अभी इन चीजों की आजमत नहीं आई कि अभी हमारे घर का माहौल नहीं बना। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत की असर तो ऐसा है कि जिससे सब चीजें अली फरमाते थे कि हमारे बाजार हमारी मस्जिद जैसे हो गए बाजार। हालांकि बाजार सबसे बुरी जगह है, तो अभी हमारे घरों में भी ये चीज मुंतकिल नहीं हुई है। हमारे बच्चे, हमारे बच्चों को हम कैसे लिबास पहनाते हैं? बच्चियों को ये हम नहीं पहनाते, हमारी बीवी पहनाती है। बीवी क्यों पहनाती है? उसका अभी इन बातों पर यकीन ऐसा नहीं आया जैसा होना चाहिए, तो वो सब कुछ करती है। तबलीग वाले की बेटी है, मौली साहब की बेटी है, सब कुछ हो रहा है। अभी तक ये तबलीग हमारे घरों में नहीं गई, घर वालों ने इसका असर नहीं लिया। तो इसके लिए यहाँ ये बात समझाई जा रही है भाई ये अमल को ऐसे कैसे किए जाए। तो अक्सर हम पता ये चलता है कि इसमें जौफ होता है, हजरात जैसे कहते हैं वो नहीं होता तो उसके असर जाहिर नहीं होते, इसलिए इसका मुजाकरा होता है। अभी भी यही होगा कि आप में से किसी साथी को बुलाएंगे, आपके मस्जिद में जो हो रहा है उसको आप बताएं ताकि उससे मुतालिक जो रहबरी है वो हो जाएगी। तो फिर अल्लाह करे हमारा आइंदा अच्छे से अच्छे करने का रुख कायम हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह? अरे भाई करेंगे, आपको ज्यादा ठंडी लग रही है? अच्छा आप आ जाए, चलो आप आ जाए, जरा हरकत करेंगे आपकी ठंडी चली जाएगी। चश्मे वाले आपको कह रहा हूँ, ये बुजुर्ग को आपको कह रहा हूँ जी, आपको कह रहा हूँ भाई। अच्छा तशरीफ ले, इतने खूबसूरत है, इतने जोरदार आदमी है और सामने है माशाल्लाह, बैठ जाए बैठ जाए, बड़े प्यारे आदमी है। आप ये बताएं कि आपकी मस्जिद में मशवरा कैसे होता है और 2.5 घंटे कैसे लगाते हो आप? कौन से हल्के के आदमी है?
रंगून नगर।
आप बर्मा से हैं क्या? अच्छा चले ठीक। तो आपकी कौन सी मस्जिद है?
जुमा
मस्जिद। वाह भाई वाह, बड़ी मस्जिद, तो बड़ी कारगुजारी होगी। सुनो तो एक तो आपके मशवरा कैसा होता है और दूसरा 2.5 घंटे आप लोग कैसे लगाते हो?
मशवरा मस्जिद और जमात बाजार के बाद बैठते हैं, कम से कम 10 साथी जैसे रहते
हैं। चले 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 आप चलते रहे।
रोजाना सबको मुलाकात दी जाती है।
आपकी मस्जिद में कितने साथी है? वक्त लगाए हुए 4 महीने वाले, चिल्ले वाले?
मुझे अंदाजा नहीं है
क्यों पता नहीं है हा? जी मौलाना साहब है अच्छा मदरसे में थे पता नहीं था कौन से लकमा दे दो रंगून नगर जो मस्जिद के साथ लकमा दे दो 20 वाह 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 और चिल्ले वाले 70 90 आदमियों का मजमा है माशाल्लाह मशवरे में कितने बैठते हैं 20 आदमी माशाल्लाह और रोजाना मुलाकात में कितनी जमातें जाती है चार हल्के हर हल्के में कितने कितने जमाते हैं तीन तीन जमात तो 12 जमाते काम कर रही है अच्छा 12 4 6 जितने भी हो जाए इतने कर लेती है अच्छी बात है आपकी मस्जिद के अतराफ में मकान कितने हैं 170 100% मुलाकात आप कितने दिन में पूरी करते हैं कभी 2 महीने कभी 3 महीने अच्छी बात और मुलाकात में जाते हैं तो घरों पर बैठकर बात करते हैं एक दो जमात ऐसी है जो बैठकर बात करते हैं बाकी जमात है रात को मुलाकात में जाते हैं खाने का वक्त होता है तो बाहर बुलाकर कर लेते हैं अच्छा वो उनसे तकाजा नहीं करते कि हम आपसे घर में बैठकर बात करना चाहते हैं अच्छा तो फिर आप ऐसा नहीं कहते कि हम आप खाना खा ले फिर हम खाने के बाद आते हैं जी आप ऐसा नहीं कहते अच्छा क्यों आप भी खाना खाने जाते हो वो कह रहे हम भी खाना खाने जाते हैं तो अच्छा फिर एक मुलाकात में कितना टाइम आप देते हो 15 मिनट अच्छी बात है तो 100% मुलाकात 2 महीने या 3 महीने में हो जाती है अच्छी बात है और आप मशवरे में क्या क्या चीजें सोचते हो आपके मशवरे में 20 साथी होते हैं आप मशवरे में क्या चीजें सोचते हो बोले ना आपको बैठने का अल्लाह ने अजर दे दिया आप घबराइएगा मत आपको क्या क्या अजर दे दिया बैठने का और सारे काम का अजर दे दिया जवाब वो दे रहे हैं अजर आपको मिल रहा है जी अच्छा 3 दिन के बारे में जो हफ्ते पे हैं तो 3 दिन की जमात का सोचते हैं फिर आपके मस्जिद में कितनी तारीखें होती है चिल्ले की साल में 2 जमात है आपकी जमात में हमें जमात लेकर जाने वाले कितने हैं
हमारी मस्जिद में जमात लेकर जाने वाले 8 से 10 साथी
तो 2 ही जमातों का आपने खाका बनाया आपकी मस्जिद में 10 साथी हैं तो
2 ही जमात के
जी नहीं कहीं तो 2 जमात उससे इनकार नहीं है लेकिन आप हजरात ने जो कहा कि भाई जितने अमीर हों इतनी जोड़ियां बनाकर इतनी जमातें बनाओ तो आपके पास तो 10 साथी हैं तो आप तो 10 जोड़ियां बना सकते थे हर महीने की एक
साल के शुरू में साथी बनाए थे लेकिन कोई साथी को जिम्मेदार में दूसरे की वजह से नहीं जा सकते
जरा माइक ऊपर करो
जो साथी कुछ जिम्मेदार थे जो उधर की वजह से नहीं जा सके
उसमें तो 8 नहीं गए तो 8 को हो सकता
है हमने 2 आदमी एक जमात पर रख के 5 जोड़ी बनाई थी
अच्छा 5 जोड़ी बनाई थी तो आपको तो ऐसा कथन की अमीर के साथ मुआविन देने का 2 अमीरों को जमा करने का ऐसा सुना था आपने अच्छा तो आपने अकल से अपने किया तो फिर
वो साथी
आपने क्या सुना था ये बताओ
कि भाई एक अमीर है 2 मुआविन हो
एक अमीर 2 मुआविन 3 मुआविन ठीक है तो आपने फिर 2 अमीरों की क्यों जोड़ी बनाई
2 आदमी की जोड़ी होती है तो मुलाकात को तश्कील करने में आसानी हो जाती है
नहीं वो तो अच्छा है तो मुआविन से नहीं होता होगा
मुआविन जल्दी वो हमारे यहाँ क्या होता है कि उल्टी के वक्त में साथी देखते भाई कौन कौन जा रहा है एक जिम्मेदार है 2 जिम्मेदार है उसके बाद वो हमारे पास ये आदमी जा रहा है ये जा रहा है उसके बाद उसको जो
अच्छा बाद में देख देख कर करते हैं सब जगह कौवे काले ही है सब जगह कौवे काले ही है तो आप ऐसा कहो कि हमारे वहाँ सब जगह ऐसा होता है आप चिल्लों में जाते हो तश्किल करते हो वहाँ भी लोग ऐसा नहीं देखते तो सब जगह कौवे काले ही है तो जब सभी जगह काले हैं तो उसको बोलने की जरूरत है कोई सफेद आ जाए तो बोल सकते हैं यार ये सफेद कौवा आ गया सब काले ही काले हैं तो उसको क्या बोलने का पब्लिक में तो यही रुख होता है ना कि कौन जाता है लेकिन हमें तो वो चीज चलानी चाहिए जो हमारे हजरत ने फरमाई नहीं अच्छा भाई हमारी जो तश्कील होती है वो तो इसीलिए होती है वो उजर कर रहे हैं हमें तश्कील करके रैन बनाना है तो आपने तय तो करवाया, मुजर उसने किया। मौली साहब यहाँ जाओ, इस तरफ बिस्तर है, यहाँ उस पर बैठ जाओ। आपको, आपका नाम इसाक है? सुफियान में इसाक को बुला रहा हूँ, आप तो वहीं खड़े रहे, आप खड़े रहे, अल्लाह ने खड़ा कर दिया आपको। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो साथी उजर करते हैं उनके अपने जोड़ी का वक्त किया, उसके बाद आप उनके ऊपर उजर पेश किया, तो उसको हल करना, उसको जमाना, उसकी मेहनत नहीं करते लगा था।
मेहनत करते हैं, तैयार भी होते हैं, वक्त ऐसा होता है कि भाई जिम्मेदार हो जाता है।
लेकिन आपके ज्यादातर आठ नहीं पांच तो दो ही गई, तीन जोड़ियां इस तरह से हो गई। अच्छा अच्छा, और क्या मशवर में सोचते हो? आपके मोहल्ले में कोई बीमार हो उनकी आदत के लिए जाना, कोई अल्लाह के रास्ते में गए उनके घर वालों की खबरगिरी करना, मेहमान जमात आई उसके नुसरत करना, और इस तरह की बातें सब सोचते हो आप लोग मशवर में? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, तशरीफ रखे। आपका जो 20 का मजमा है, कब से 20 का मजमा है? 2008 से 20 ही है। आपने बोर्ड लगाया है कभी कोई यहाँ पे दूसरों को आना मना है ऐसा बोर्ड लगाया? तो आपके क्यों फिर बढ़ते नहीं? हाँ भाई, अच्छा भाई देखो ये मेहनत भी करते थे, सुनाओ माइक लो, क्या क्या मेहनत करते हो बढ़ाने की, जरा सुनाओ।
वो जो चार हल्के हमारे हैं, वो हल्के वाले के अंदर जितने मकान आते हैं वो सारी से मुलाकात करते हैं, उनको दावत देते हैं।
अच्छा,
मजीदार जमात की। और जो हल्के के साथी आ जाते हैं तो उनको हल्के साथ जोड़ भी देते हैं।
तो वो जोड़े हुए कहाँ हैं? 20 तो आपके पास 2008 से हैं, और वो जो आते हैं वो उनको आप जोड़ते हो, वो कहाँ हैं?
वो कभी आ जाते हैं, कभी मुलाकात कर लेते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं।
तो 2008 से 20 वो जोड़े हुए सब कभी आते हैं, तो कभी वाले बताओ वो कहाँ हैं? जाने वाले तो आपने बता दिए, आने वाले थोड़े बता देते।
आने वाले सब ठीक है,
और 20 के अलावा है?
पांच सात साथी 20 के अलावा है।
अच्छा, अच्छी बात है। और अच्छा बात करते हो आप मुलाकात में, जरा माइक ऊपर करो।
मुलाकात में सिफात की बात करते हैं, उनको सारी चीजें समझाते हैं, उसके बाद इनकी तश्कील होती है।
अच्छा,
अगर चिल्ले की तश्कील है तो चिल्ले की तश्कील करते हैं, तीन दिन की तश्कील करते हैं जो हमारा हफ्ता तय होता है, उसके बाद उसको अमल में जोड़ने की दावत देते हैं।
माशाल्लाह, इस मुलाकातों से आपको मोहल्ले, आपको क्या फायदा होता है और मोहल्ले में क्या फायदा हुआ? इतने सालों से आप फिर रहे हो, तो मोहल्ले के पहले क्या सूरत हाल थी, अभी क्या है, क्या फर्क हुआ, क्या फायदा हुआ? न हुआ तो ठीक, न हुआ तो कोई बात नहीं।
मोहल्ले के अंदर तो ऐसा है कि मुलाकात होती है, और बाद मरतबा पूरी पूरी मुलाकात होती है तो साथी जुड़ते भी है, नया जमातें ही बनती है, तो मुलाकातें नहीं होती है तो जमात, तीन दिन की जमात तो मुश्किल हो जाती है।
अच्छा, एक मस्जिद वालों की कारदारी मेरे सामने आई, वो कहने लगे कि तबलीग नहीं आई थी तो हमारे मोहल्ले में एक कच पर्दा था खाली, एक पूरे मोहल्ले में। तबलीग के आने के बाद अब 30% शरई पर्दा हो गया हमारे मोहल्ले में, फिरना हुआ, मर्दों में काम हुआ, मसूरत में काम हुआ, और बाकी 99% औरतों में रिवाजी पर्दा हो गया, वो भी नहीं था। और हमारे मोहल्ले में एक दो हाफिज थे, अभी करीबन 40-50 हाफिज हो गए। इस तरह से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब तबलीग आपके मोहल्ले में आई, आप लोगों के पास जाना हुए, शुरू हुए, आना शुरू हुए, समझना समझाना हुआ, तो उसके असरात आपने कुछ देखे आपके मोहल्ले में?
हमारे मोहल्ले में मकतब के अंदर बच्चों का पढ़ना आना बढ़ गया।
अच्छा,
उसके बाद पर्दा हमारा वहाँ 70% अल्हम्दुलिल्लाह है।
ओहो, माशाल्लाह,
मोहल्ले में
माशाल्लाह 70% पर्दा।
उसके बाद कुछ घरों में
पहले कितना था?
पहले तो ज्यादा कम उतर रहा था, पहले साथी ज्यादा थे, अभी वो सब साथी दूसरी जगह चले गए, चले गए भाई दूसरे मेल
तो घट जाना चाहिए, धुआं तो बढ़ गया।
नहीं तो जो अभी नए आते उनको तरकीब देते, हमारे यहाँ क्या है बाहर कोई कपड़े धोने का ऐसा कुछ रिवाज नहीं है।
अच्छा,
जो दूसरे मोहल्ले में होता है ना बाहर पानी,
मतलब रिवाज की वजह से पर्दा है?
नहीं, उसकी वजह घरों की तालीम की वजह से।
अच्छा, घरों की तालीम की वजह से, माशाल्लाह।
दो हल्कों में मशवरा का इस्तेमाल भी होता है, वो तालीम की, घरों की तालीम की भी तादाद होती है, तो घरों की तालीम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 70% के करीब पड़ता है।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बच्चे भी मदरसा जाते हैं
जी,
माशाल्लाह। अब घरों में जब मुलाकात में जाते हो तो उनकी दीनदारी की बात भी करते होंगे, फिर उनके बच्चों की भी बात करते हो
जी,
उनके बच्चों को मकतब में भेजने की करते हो
जी,
और मस्तूरात के घर की तालीम की वगैरह की भी बात करते हैं, मतलब पूरी बात आप हजरात करते हैं।
पूछ भी लेते हैं मस्तूरा के तालीम होती है अगर घरों में होती तो कैसे होती है।
अच्छा, एक बात ये मालूम करनी थी, आपने सुना है कि हजरत यूँ कहते हैं कि भाई 15 दिन में अपने मस्जिद के दराज के मकान पूरे कर लो, आपने सुना है ये? अच्छा सुना है आपने, तो फिर आप 2 महीने में करते हो 100% का मुलाकात, 3 महीने में करते हो तो वो 15 दिन में हो जाए, उसको कभी सोचा आपने?
हर बार तरकीब देते है।
अच्छा,
कोशिश भी करते
है। आपने एक जमात के जिम्मे कितने मकान किए हैं?
हमारे एक जमात के जिम्मे 40 मकान है।
40 मकान है, आपकी जमात के जिम्मे भी 40 मकान हो जाए ना। और आपने फरमाया कि हमने 4 मोहल्ले तकसीम किए, ठीक है, और रोजाना कभी 4 कभी 6 और कभी कितनी जमातें काम करती है?
12 जमात।
मैं ऐसा समझता हूँ कि 12 जमातें अपने भूल जाओ, कितनी जमात है?
12 जमातों
को भूल जाओ, 10 भी नहीं करवानी, 8 भी छोड़ दो, 6 भी छोड़ दो, खाली 4 जमातें काम करे। कितनी जमात?
4 जमात।
अल्लाह बोलो तो खरे,
4 जमात
और हर मोहल्ले की 1 जमात करे। आप लोग कितना टाइम देते हो रोजाना?
इशा के बाद मुलाकात सभी करते हैं, और हमारी जो जमात है वो कभी 12 से 2 बजे 12 से 1 का वक्त फारिग करते हैं,
तो वो 1 घंटा। और रात को कितना देते हैं?
रात को जो जमात मुलाकात करती है वो,
चलो अपने 1-1 घंटे वाली रखो अभी, ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में 40 मकान है और आपने कहा कि हम 15 मिनट एक मुलाकात में लेते हैं, तो 1 घंटे में कितनी मुलाकातें होगी?
4,
ठीक है। दिन के 40 मकान कितने दिन में पूरे हो जाएंगे जी? 10 दिन में। और ये कहते हैं कभी 2 दिन में पूरे होते हैं, 2 महीने में, कभी 3 महीने में, तो टाटिया मिलते हैं इस सब किताब के? अरे बोलो तो खरे भाई, आप ये सब हिसाब करते हो कभी?
मुलाकात करते हैं, जैसे कि भाई 12 से 1 में गए तो जिसकी मुलाकात में अगर वो पारी है तो उसके बाद बैठ के बात करते पूरी देर, कभी 2 मुलाकात होती है, कभी 1 मुलाकात भी होती है, कभी कोई शादी का सामना होता है, ये होता है, तो उसके रात में मुलाकात करने की कोशिश करते हैं।
वो हमें इससे एतराज नहीं है, हम तो टाँटे मिला लेंगे भाई, तो आप ये कहते हो भाई सुबह नहीं होती तो रात को करते हैं, करते तो हम तो उसके बात कह रहे हैं। अगर एक आदमी रोजाना 1 घंटा दे रहा है और 3 मुलाकातें कर रहा है, 4 मुलाकातें कर रहा है, तो उसके 10 दिन में पूरा होना चाहिए, तो 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में। ये तो 1 जोड़ी फिरे तो, और आपने कहा 2 भी जोड़ी फिरती है, कभी 12 जोड़ियां भी फिरती है, कभी 6 जोड़ी भी फिरती है, कभी 4 भी फिरती है। मैंने तो कितने का एवरेज गिना?
4 जोड़ी
खाली करे हर मोहल्ले में ये। तो अगर वो जैसा ये कह रहे हैं ऐसा हो तो कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए? चलो 10 के बजाय अपने 20 दिन में गिनो, बराबर है। अल्लाह भाई चलो 30 दिन में गिनो, महीने में पूरा हो जाए। तुम तो कहते हो 2 महीने 3 महीने, तो टाटिया मिलते हैं?
पूरा महिला कवर होता नहीं है, जिसके जिम्मे बात होता है वो अपार्टमेंट आते हैं या कारीगर काम करते हैं, तो कारीगर काम में होता है तभी मुलाकात 2-3 दिन तक नहीं होती।
अच्छा, तो कोई बात नहीं, वो उसको जिस वक्त होती है वो उस वक्त कर लेंगे, बाकी वो उनके नहीं होते तब घर थोड़ी आ जाते होंगे, उस दिन किसी न किसी की करते होंगे, नहीं करते होंगे?
कोशिश करते हैं।
हम वही तो कह रहे हैं कि भाई मोहल्ले में आप मिलने गए, जब किसी की नहीं हुई था उसके अड़ोस पड़ोस की करते होंगे, खाली थोड़ी आते हैं, फेरिया खाली थोड़ी आता है, आप वापस आ जाते हैं फिर कर, या किसी न किसी की जरूर करते हैं।
कभी कभी हमें तश्कील के अंदर वक्त दे देते हैं।
हाँ,
3 दिन की जमात होती है तो उसमें तश्कील में 12 दिन
टाइम। आपकी महीने की कितनी जमात जाती है?
महीने की 2 जाती थी, फिलहाल 1 जाती।
तो आप तो कह रहे हैं कभी कभी होती है, कुल मिलाकर कुल कहना 3 दिन तो है, 3 भी नहीं है, 3 दिन ने 3, तो आपकी 2 तो जमात है, तो आप कहते हैं कभी कभी दे देते हैं, कितनी तो आप कभी कभी दे देते हैं, 1 तो है भाई। मैं तो ऐसा समझा 30 दिन की 31 जमातें जाती होगी तो आपको ज्यादा टाइम उसमें जाता होगा, आप समझा बात? आप कभी कभी तो आपके 30 दिन में 31 दिन की जमाते हो, तुम ऐसा बोल रहे तो ठीक है, अखे महीने में 1 जमात जा रही है, और आप कहते हो हमारा टाइम तश्कीला में चला जाता है भाई। ये चीजें सोचने की है। गुजराती में कहवत है, जैनो हिसाब वासी यानी मुंडी नासी, जैनो हिसाब वासी एनो हिसाब, जनो हिसाब वासी यानी मुंडी नासी। अपने ये जोड़ नहीं बिठाने का। वो एक बनिया था दुकान लेकर बैठा, तो हिसाब में उसके 8 आने कम पड़ गए, तो बड़ा परेशान हुआ, मेरे 8 आने कहाँ गुम हो गए, तो उसने दिया जलाया, अंधेरा हो गया, तो ढूंढने के लिए के कहाँ है, तो 5 रुपए का तेल जला दिया। तो किसी ने कहा कांडे 8 आने के लिए तूने 5 रुपए का तेल जला दिया, कहा वो भाई 5 रुपए का तेल जल जावे वो सस्ता है, पर वो सुराख नजर आना चाहिए, कहाँ से छटक गए 8 आने, क्योंकि वो नहीं मिला कल वहां से रुपया छटक जाएगा, दूसरे दिन 2 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 4 रुपये, तो आज सस्ता पड़ेगा 5 रुपये का तेल जलाकर वो सुराख मिल जाए कि कहां से गायब हुए हैं, वो सुराख ढूंढ लेने का, वरना समझे बात आप। और बनिया कहने लगा हमको सस्ता पड़ेगा वो कि हम थोड़ा तेल जलाकर देख लें कहां से गायब हुए, नहीं समझे बात। चलो बैठो, अल्लाह का दया कर दे भाई। माशाल्लाह मशरे के दिनों ने अच्छी कारदारी सुनाई, माशाल्लाह सारे उम्र की फिक्र करते हैं। बस एक बात की बात जरूरत है कि हम अपने मस्जिद का अमला बढ़ाएं, हमारी मस्जिद की फिक्रों में हम पूरे मोहल्ले वालों को शरीक करें। देखो जो चीज तुम मोहल्ले में चलाना चाहते हो ना, अगर मोहल्ले वालों की वो फिक्र नहीं होगी तो तुम्हें साथ समर्थन नहीं मिलेगा, सहकार नहीं मिलेगा, और कैसे मिल जाएगा। आप जो चीज उनसे करवाना चाहते हो ना उसके उनके सोच बनी, ना फिक्र बनी, ना उसके लिए वो तैयार हैं। अब हम उनके पास मुतालबा करेंगे तो कहेंगे भाई तुम अपना अपना देख लो, हमको छोड़ दो, हमें जो रूखा सवाब, जो रूखा जवाब मिलेगा ना वो इस पर मिलता है, भाई तुमने हमारा में सोचे तुम्हें तुम्हारा जो लो ने। और अगर वही आदमी किसी न किसी दर्जे में अगर मस्जिद में जुड़ता हो गया तो आप मस्जिद से जो फिक्र चलाओगे ना उसमें वो आपको साथ सहकार लेगा, समर्थन मिलेगा, और जो आप बातें चलाना चाहते हो वो आसानी के साथ आपके मोहल्ले में चल पड़ेगी। एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा ये हुजूर का उम्मती है, उसके जिम्मे खत्मे नबूवत के सदके में ये हुजूर वाली मेहनत है। अगर वो नहीं करेगा तो ये कसूरवार है कि आप अपने आप को अल्लाह के दिन का मददगार बनाकर जीना है। अब ये बेचारा अल्लाह के दिन के मददगार करते हुए नहीं जिएगा तो ये अपना नुकसान उठाता है। हमें एक एक को हुजूर के फिक्र मेहनत में शरीक करना है इस ध्यान के साथ, उसके लिए हम अमला बनाए, उन सबको जोड़ने की कोशिश करें। माशाल्लाह भाई ने अच्छी कारदारी सुनाई, भाई ने कहा कि हम लोगों के पास जाते भी हैं और लोगों का जहन भी बनाते हैं, लेकिन एक चीज की कमी मुझे महसूस हुई, वो क्या है पता है? जो हजरात अपनी मुलाकातों में इरादे वादे नियत करते हैं कि हम मस्जिदवार जमात बैठ में बैठेंगे, उनकी वसूली करना। इनकी वसूली कैसे होती है? उनकी वसूली इस तरह होती है कि भाई माशाल्लाह हाजी बिलाल ने नियत की, मैं इंशाल्लाह बैठूंगा, ये इन्होंने नियत किया, इन्होंने नियत की, उन्होंने नियत की, हमने मस्जिद में सलाम फेरा दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब हमने देखा कि हाजी बिलाल साहब यहीं बैठे हैं जिन्होंने नियत की थी। अब बैठे बैठे हमने कहा हाजी साहब खैरियत, तबीयत ठीक, माशाल्लाह हम परसों आए थे आपके पास, आपने कहा था मशवरे में बैठूंगा, तो हाजी साहब देखो अभी मशवरा हो रहा है, थोड़े से आगे बढ़ जाए। अब मैंने इस तरह अपने साथी को वसूल किया, अब हमारी मस्जिद की 4 जमात है, 4 ने इस तरह से दाएं बाएं देख लिया, 8 है तो 8 ने देख लिया, 12 है 12 के 12 ने देख लिया, और 6 महीने लगातार इस तरह से जोड़ते रहे तो सच बताओ मामला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो भाई। और अगर हम गश्त करके आए और वो साथी मेरे बगल में बैठा है और न मैंने उसको देखा न उसको पूछा तो वो बैठेगा? अरे बोलो बैठेगा। तो फिर अमला बनता नहीं है उससे, उससे अमला बनता नहीं है। तो अमला बनाने की एक अहम, घर घर जाए जब मुलाकात में तो जैसे और सारे अमल की बात करें ऐसे मशवरे में जुड़ने की भी बात करें, और फिर जब मस्जिद में वो नजर आए तो उसको लगे हाथों ले लेना, वो खड़ा हो गया चलने लगा तो ऐसा है जैसे घोड़े पर बैठ गया, अब रुकना मुश्किल है, तो उससे हमारा अमला बन जाएगा। फिर उससे फायदा क्या होगा पता है? ये तो इस मस्जिद का मैंने हल पूछा कि क्या सूरत हालत, माशाल्लाह इन्होंने अच्छी सुनाई कि हम 2-3 महीने में पूरा कर लेते हैं, बाकी हमें और जिलों में हम जाकर आए, मस्जिद वालों ने सुनाया कि हम साल भर में भी पूरा नहीं करते। एक एक एक, एक जगह पर अभी करीब दिनों में किसी ने सुना है अभी आज तक हमारे 100% हुई नहीं मुलाकात, 100% आज तक नहीं हुई। तो क्यों? उनके पास अमला कम होता है। अगर मान लो कि 20 आदमी हैं, अब वो 20 आदमी इस तरह से रोज साथी बढ़ाते रहे तो बढ़ते जाएंगे, तो 20 से 40 तो जमाते बढ़ जाएगी, जमाते बन जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। गुजराती में जाजा हाथ जी, जाजा हाथ रड़िया मना, उसका भी गुजराती करना पड़ेगा। 1 से 2 भले, 2 से 4 भले, 4 से 8 भले, जितने हाथ बढ़ जाएंगे इतना काम आसान हो जाएगा। और एक काम ये करें, जो मशवरे में बैठा उसको खुला मत छोड़ो, उसको फौरन किसी जमात में जोड़ दो, जिस मोहल्ले का जो आदमी हो उसको उस मोहल्ले में जोड़ दो, तो हमारा अमला भी बढ़ेगा और वो काम में भी मशगूल होता जाएगा। आज मशवरे में आया, मशवरे में आने के बाद माशाल्लाह अल्लाह बहुत मुबारक करना है जी साहब, देखो ये आपके मोहल्ले में ये जमात काम करती है, अब आप इनके साथ बैठेंगे, अब वो मोहल्ले वाले उनको खुद ही वसल कर लेंगे, समझना बात, तो वो जुड़ जाएंगे। और अगर आपने उसके जिम्मे काम नहीं रखा तो फिर वो फिर चले जाएंगे। अच्छा, आपकी मस्जिद में मशवरा करने के बाद चारों मोहल्लों की जमातें बैठती है? बैठती है। माशाल्लाह ये बड़ी बात है कि हमारा मशवरा होने के बाद हर मोहल्ले की जमात थोड़ी देर के लिए बैठ जाए कि भाई आज किसकी मुलाकात हमें करनी है, किसकी बारी है। मान लो वो आदमी सुबह मिलता है तो फिर वो हमारे चार एक नंबर की जमात में आज वो सुबह मिलता है, उसको कौन अभी मिलने चला जाएगा, और उसके बगल का आदमी शाम को मिलता है, हम चार में से कौन उसको मिलने चला जाएगा। उसकी तरतीब बनाना, जो सुबह मिल सकता है उसको इस तरह भेज दो, जो शाम में मिलता है उसको शाम वाले के हवाले करो। इस तरतीब के लिए मस्जिद और जमात के बाद दो चार मिनट के लिए हर मोहल्ले की जमात बैठ जाए, जरूर बैठे, और आज का निजाम बना ले। आपके सारी मस्जिदें, जिले की सारी मस्जिदें ऐसा करती है? अरे भाई सारी मस्जिदें ऐसा करती है कि मशवरे के बाद मोहल्ले की जमात बैठ जाती हो? ऐसी कितनी मस्जिदें करते हैं, जरा हाथ उठाओ। अब तीनों एक ही मस्जिद के तो नहीं ना, आपकी कौन से रंगून जामा मस्जिद और आपकी, वो बोलते नहीं हाथ उठाया, नांदन पेड़ा वो पहाड़ी पर ऊपर था, वो इज्तिमा जहां हुआ था वो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और कौन सी मस्जिद करती है आपकी, आपकी मस्जिद कौन सी है? आवा माशाल्लाह। और कौन सी मस्जिद वाले इस तरह बैठते हैं जी? भाई जरा सुनो, भाई सुनो जरा, क्या करे माशाल्लाह, चार मस्जिदें हुई, और कौन सी मस्जिद वाले बैठ जी? मोटवाड़ हल्के वाले आपकी मस्जिद बैठती है, और भाई अच्छा अब ये बता दो क्यों आप लोग नहीं बैठते है भाई? आप लोग जानते हो बुजुर्ग ऐसा करने को कहते हैं? भाई बुजुर्गों ने ऐसा करने को कहा है आपको पता है भाई? अच्छा इसमें से किसको किसको बताया, जरा हाथ उठाओ कि बड़े मशवरे के बाद हर मोहल्ले की जमात दो पांच मिनट बैठे, इसका बुजुर्गों ने कहा है, इसका किसको किसको बताया, जरा अच्छे से हाथ उठाओ, मुझे नजर आए ऐसे। अच्छा अच्छा फिर क्यों नहीं बैठते हो आप लोग जी? जानते तो करते क्यों नहीं हो? ये 10 साल हो गए इन बातों को, उसका नफा ये होता है कि फौरन लगे हाथों तरतीब बन जाती है। अब मशवरा पूरा हुआ, मशवरा को लंबा ना करो, मशवरा होने के बाद फौरन अच्छा भाई मोहल्ले की जमाते बैठ जाओ, जो जिम्मेदार हो वही ऐलान करे अच्छा भाई मोहल्ले की जमाते बैठ जाओ। अब उसे कहा तो इंशाल्लाह मोहल्ले की जमाते बैठ जाएगी, तो फौरन लगे हाथों उस दिन की तरतीब बन जाएगी। बात समझ में आ गई? इसलिए मशवरे को, जिसका मशवरा मजबूत उसका काम मजबूत। हमारी पूरी तबलीग जो घूमती है वो मशवरे पर घूमती है। आपने जूने जमाने की चक्की देखी है? एक पत्थर नीचे होता था, एक पत्थर ऊपर, नहीं हुए गोल गोल घूमते थे, देखा है? किसने किसने देखी है वो घंटी? उसके बीच में क्या होती है, एक लकड़ी, वो ना चक्की नहीं फिरेगी, पूरी चक्की उस पर फिरती है। ऐसे पूरी तबलीग मशवरे पर फिरती है, जिसका मशवरा सही उसका काम सही। तो हमारा मशवरे में हमको ये रुख कायम करना है। अब से कौन कौन करेगा चलो बताओ, क्या करोगे? हर मोहल्ले की जितनी जोड़ियां हैं वो मशवरे के बाद जो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दो तीन मिनट के लिए, और आज की अपनी मुलाकातों का निजाम बना लें। बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? बैठोगे इस तरह? और दूसरा क्या, मशवरे का क्या बढ़ाना है? अमलावला कैसे बढ़ाओगे जी? रोजाना की जब मुलाकातों में जाओ तो जैसे और अमल की बात करो ऐसे इसकी भी बात करो, और उसको अहमियत समझाओ कि हम अपने आप को मस्जिद से जोड़े। और मस्जिद से खाली ये ना कहो मस्जिद से का मशवरा, उसको मस्जिद कितनी बड़ी चीज है उसकी अजमत बिठाओ। अल्लाह पाक रोजाना बैतुल्लाह पर 120 रहमतें उतारते हैं, और वो बेहतर मस्जिद पर, वो सारी रहमतें मस्जिदों में मुंतकिल होती है। जिनका ताल्लुक मस्जिद से है वो मस्जिदों से इनको लेकर आते हैं। हम हुजूर की उम्मती है, उम्मत की फिक्र के लिए हमारे जिम्मे जिम्मेदारी है, उसके लिए हम रोजाना मशवरा बैठते हैं। इसको इतना इसको समझाओ कि इसके करने पर इसको खुशी हो और इसके छूटने पर इसको गम होने लगे, समझ रहे हो? फिर उसको नियत करवाओ और वो मस्जिद में आ जाए, फिर लगे हाथों उसको वसूल कर लो। करोगे इसकी फिक्र इंशाल्लाह? और दूसरी बात कि देखो अभी ये भाई का, भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा थोड़ा सा सबर कर ले भाई, अब तो आप थोड़ी देर बैठे हैं, आप तो साल में आज ही बैठे हो है ना, कल तो जोन वाले बैठे थे, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आपको जमुनी ढाबी दिखता है? वो 42 दिन से बैठ रहे हैं, कितने दिन से बोलो? रोज आपको एक भी उठता हुआ नजर नहीं आएगा, पिशअप के लिए जा रहे हैं, और आप आज ही बैठे हो और उठ भी रहे हो, बैठ भी रहे हो, तो तय कर लो इंशाल्लाह सुकून से बैठेंगे। आपका कितने दिन का इज्तिमा है? 2 दिन का। और इनका बोलो कितने दिन का? 42 दिन का। आज आप शामियाने में सोए, 42 दिन से सो रहे हैं, कितने दिन से बोलो? 42 दिन से ठंडी आपको भी लगती है, इनको भी लगती है, चाहे कितना ओढ़ने का हो। आप तो घरों पर होते हैं, घरों से अच्छा इंतजाम करके आते हैं, ये सफर में है नहीं। अभी उठा फजर के बाद एक साथी ने कहा आज बहुत ठंडी लगी, उसने कहा बहुत ठंडी लगी। रात 12:30 बजे एक आदमी फिर रहा था, क्या हुआ? कहा जी बहुत ठंडी लग रही, ओढ़ने का नहीं है। ऐसा होता है, आपको भी लगती है, इनको भी लगती है, समझ रहे बात हम। लेकिन फिर भी वो अभी यहाँ बैठे हैं, रात को नींद आई हो तो भी बैठे हैं, नींद ना आई हो बोलो, आपका तो इज्तिमा हो जाएगा, घर जाकर जोर बात सो जाओगे, इनका इज्तिमा शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपकी तो दुआ के बाद छुट्टी और उनका दुआ के बाद छुट्टी है, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, इनको छुट्टी नहीं है, तुम्हारी तो छुट्टी जोर के बाद। तो आप सुकून से बैठोगे। अच्छा कौन कौन उठ कर जाएगा, जरा उठाओ। अच्छी बात। तो दूसरी बात देखो, अभी भाई ने कारदारी सुनाई एक तो मशवरे की, दूसरी बात क्या सुनाई बताए, ढाई घंटे की। ये ढाई घंटे जो है ना, ये समझो 5 उंगलियां हैं, इनमें सबसे ताकतवर जो है ना उंगली वो अंगूठा है, सबसे ताकतवर। ये उंगली कट जाएगी अंगूठा होगा तो हाथ की ताकत बाकी रहेगी, ये उंगली कटेगी हाथ की ताकत बाकी, जिसका अंगूठा कट गया उसके हाथ की ताकत गई। ये अंगूठा ऐसी ताकत देता है, उंगलियों से तुम नहीं कायम कर सकते, लेकिन तुम ये है तो भी तुम पकड़ लोगे, ये तो भी पकड़ लोगे, अंगूठा कट गया तो खत्म। ये तबलीग ये सारे तकाजों में ढाई घंटे जो है ना, ढाई घंटे ये अंगूठे की हैसियत रखता है, ये सब पर फिरेगा, ये सब पर फिरेगा, सारे तकाजे इससे पूरे होंगे, समझने बता। उंगली दूसरी किसी पर नहीं फिर सकती, लेकिन अंगूठा, अरे बोलो, सब पर फिर। चिल्ला उससे वसूल होगा, 4 महीने इससे वसूल होंगे, 3 दिन उससे वसूल होंगे, सारे तकाजे इस अंगूठे से जैसे फिरते ना, ऐसे सारे तकाजे आपके ढाई घंटे से पूरे होंगे। आप अपने ढाई घंटों को मामूली ना समझो, सारे तकाजे लोगों से जुड़े हुए और हम मस्जिदों में हैं। अगर आपके ढाई घंटे लगे तो इंशाल्लाह सारे तकाजे पूरे होने की शक्लें बनेगी। इसलिए आप हजरात का ढाई घंटे दो गरज से लगाना, एक तो मैं 24 घंटे में कम से कम 10वां हिस्सा तो अल्लाह के नाम पर लगाऊं, 10वां हिस्सा तो मैं अपने अंदर ताजगी महसूस करूंगा। मैंने अभी बताया ईमान मेला हो जाता है, मेरा और आपका भी मेला हो जाता है, और जमात के मुकाबले में घरों में मेला जल्दी होता है। घर मस्जिद जमातों में होते हैं ना तो नूरानी माहौल में, मस्जिद के माहौल में, फिजा में होते हैं, वहां जरासीम कम लगते हैं, घर में फसाद का माहौल ज्यादा होता है, मोहल्ले का फसाद, घर का फसाद, दोस्तों का फसाद, वो सारा फसाद लगा हुआ होता है। उसमें इन जरासीम को साफ करने का बेहतरीन अमल है कि अल्लाह की बड़ाई बोलो। अल्लाह की बड़ाई बोलना अल्लाह को बहुत पसंद है, और रब्बकफकब्बिर। ये जब हम फिरेंगे ना तो उसमें लोगों को एक एक की खुशामद करना, एक एक की दरामद करना, तो हमारी ताजगी होगी। ये दावत देने से ईमान बनता है, हर अमल की तासीर है। देखो कुरान की तासीर एक अलग, नमाज की तासीर अलग, रोजों की तासीर अलग, हज की तासीर अलग। नमाज आदमी को बेहया से रोकती है, रोजा आदमी में तकवा पैदा करता है, हज आदमी के गुनाहों का कफारा होता है, जकात आदमी के माल को पाक करता है। तो ये दावत देना का, दावत देना ईमान को बनाता है, किसको बनाता है बोलो। लुकमान हकीम ने क्या कहा, बेटा जिसका यकीन जितना मजबूत होगा उसके जिस्म से निकलने वाले अमल इतने मजबूत होंगे। हमारे अमल का दारो मदार हमारे ईमान पर है, अगर ईमान मजबूत हो तो अमल करने की चुस्ती आएगी। आप देखो बाज मरतबा तबीयत बहुत चलती है और बाज मरतबा नहीं चलती, वो ईमान के बढ़ने की बात होती है। ईमान एक कैफियत का नाम है, अगर ऊपर गया तो आदमी को चुस्ती आ जाती है और वो नीचे गया तो आदमी को सुस्ती आती है, वो सुस्ती और वो बढ़ने घटने वाली चीज है, जब उसकी बात बोली जाती है तो बढ़ जाता है। तो हम अपने ढाई घंटे अपने गरज से फिरे कि मैं फिरूंगा तो मेरी ये कैफियत बनेगी, अल्लाह को बोलने का, सहाबा के वाकयात को सुनाने का, अल्लाह के मैं अपने अगर वरना मैं मेला हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, अल्लाह के नबी सलाम के बात का मफहूम है, इसको ताजा करो, ये ताजा करना पड़ता है, ये चलना फिरना ताजा। एक तो ये गरज, दूसरा क्या फायदा होगा पता है, दूसरा फायदा ये होगा जब हम चलेंगे फिरेंगे तो चलने फिरने से अब किसी के घर में गए, अब उससे जब बात करेंगे और अल्लाह ने हमारी बात में तासीर डाल दी और वो बात समझ गया, अब वो जितने दिन पर आएगा, जितनी दीनदारी करेगा वो हमारे नामे अमल में आएगी। ये बहुत बड़ी कमाई है। मैं मौलाना इशर रमतुल्लाह का एक बयान पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा अपनी जात पर मेहनत करते हुए तुम लोगों पर मेहनत करने को मामूली न समझो। फिर अदालत ने कहा क्यों पता है, कि अपनी जात से हम कैसे भी बड़े बुजुर्ग बन जाएं, اگر ہماری موت آئی اور اللہ نے ہم سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم کتنا کر کے آئے تو کیا ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے جتنا کہا تھا 100% کر کے آیا کہہ سکتے ہیں کرنا اچھا اگر ہم سے ایسا پوچھا کہ جو کر کے آئے وہ کیسا کیا تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے جیسے کہا تھا ایسا کر کے آئے اچھا یہ پوچھے کس کے لیے کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ 100% تیرے لیے کیا ارے بولو کیا کرسی پر کیوں بیٹھے تھے مجھ سے اگر پوچھے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیرے لیے کیا تھا آدمی کا عمل ریا سے زخمی ہو جاتا ہے سما سے زخمی ہو جاتا ہے شہرت سے زخمی ہو جاتا ہے اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو آدمی کرسی پر بیٹھ کر بات دین کی کر رہا ہے اور جہنم تیار ہو جائے گی اس کی دین کی بات کرتے کرتے جہنم تیار ہو جائے گی آدمی کی شیطان نیت خراب کر دیتا ہے تو ہم اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر سکتے حضرت نے فرمایا تم دوسروں پر اپنی عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے محنت کرو اب مان لو یہ بھائی پر میں نے محنت کی یہ بھائی پر کی میں ان کو لے کر آیا انہیں کچھ بھی نہیں آتا کوئی چیز انہیں نہیں آتی میں نے مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا اس نے مجھے دیکھا دیکھی نماز پڑھی دیکھا دیکھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں نے رکو کیا وہ رکو کر رہا ہے میں نے سجدہ کیا وہ سجدہ کر رہا ہے دیکھا دیکھی حضرت نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ جس کو کچھ نہیں آتا اس کا عمل کچا ہوگا کہ پکا ہوگا کچا حضرت نے فرمایا اس کا کچا عمل اس کے کھاتے میں کچا لکھا جائے گا اس کا کچا تمہارے کھاتے میں پکا لکھا جائے گا اور تمہیں اللہ یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ کس کے لیے کیا کیسے کیا وہ جانے اس کا کام تمہارے کھاتے میں 100% کیوں کہ ہم جس کے ملاقات میں جاتے ہیں اس کو پکا بنانے کی نیت سے جاتے ہیں کچا بنانے کی نیت سے تو ہمیں ہماری نیت پر اللہ دیں گے کہ ہم پکے بنانے کی نیت سے حضرت فرماتے تھے تم لوگوں کو کما کر جاؤ یہ لوگوں کو کمانے کا موقع ہوتا ہے مولانا عمر صاحب کی بات ایک بزرگ سنا رہے تھے حضرت فرماتے تھے دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جا رہی ہیں تم انسانوں کو کما کر جاؤ انسانوں کو بعض انسان کمانے میں ایسے زوردار مل جاتے ہیں بھاری بھرکم کیسے باری برکم مل جاتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں وہ آ جائے گا ہم لوگ کو ایک مرتبہ رائے بند سے آ رہے تھے میں نے مولانا سے پوچھا مولانا ابراہیم صاحب سے اتنا بڑا باری برکم آدمی میں نے کہا مولوی صاحب آپ تبلیغ میں کیسے لگے میں نے پوچھا مولانا سے مولانا کہنے لگے ہمارے وہاں تبلیغ بمبئی سے آئی مولانا نے سنایا کہ ہمارے وہاں ایک جماعت آئی اس میں ایک نیو مسلم تھا اس کا نام تھا عبد الرحمان تو وہ آئی تھی کسی نے مجھے سنایا کوئی جماعت آئی ہے اس میں کوئی ایک نیو مسلم ہے تو میں بھی چلا گیا سر کے بعد بیان اس کا ہوا تو وہ قرضری سنا رہا تھا یوں ہوا اس کی قرضری سے میرے دل پر اثر ہو گیا میرے دل پر اثر ہوا اور میرے دل میں بات آئی یار یہ کام کرنا چاہیے بس میرے دل میں اتنی بات آئی تو اس کی بات نے میرے دل میں بات ڈالی کہ یہ کام مولانا الیاس صاحب سے متاثر نہیں ہوئے مولانا یوسف صاحب سے نہیں متاثر ہوئے تھے وہ دیکھا ہی نہیں تھا تو وہ کس سے متاثر ہوئے تھے وہ جو نیو مسلم کی جماعت آئی تھی اس نے متاثر کر دیا اس کی بات نے اور دل میں بات آئی یہ کام کرنا چاہیے کیا میرے دل میں بات آ گئی اب میں نے سوچا کرنا چاہیے تو چلے میں جانا چاہیے پر میرے پاس سنجوگ نہیں تھے چلے میں جانے کے تو میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ میں نے رمضان میں خواب دیکھا بہت زوردار خواب تو میں نے ایک بزرگ سے دعا کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر کہ شاید آپ نے کوئی نیت کی ہے اللہ سے اللہ نے وہ تمہاری قبول کر لی کہ رمضان کے بعد مجھے انتظام ہو گیا اور میں چلے میں چلا گیا یہ بیج کس نے ڈالا اللہ بولو تو کھڑے یہ 60 سال پہلے کی بات وہ آدمی تو پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا اس کو پتا ہوگا کہ میرا جو بیج ڈالا تھا وہ اتنا جاڑا جھاڑ ہو گیا اتنا پھلوں والا جھاڑ ہو گیا اب قبر میں ہول سیل میں ملتا ہوگا ریٹیل میں اس کا سب ملتا ہوگا اللہ بولو تو کھڑے کہ وہ پتہ نہیں کون سی مٹی میں پگھل گیا ہوگا اور اس کے کھاتے میں ہول سیل میں تھوک میں جاتا ہوگا کیسے جاتا ہوگا بعض دہنے ایسے مل جاتے ہیں آپ نے وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے ارے بھائی وڈیلے کا جھاڑ دیکھا ہے اس نے نہیں دیکھا اتنا پتلا سا ہوتا ہے دیکھا ہے آپ نے اللہ وڈیلے کا جھاڑا کیوں پتلا ہوتا ہے دیکھا ہے تم نے جھاڑا ہوتا ہے اچھا جھاڑا ہوتا ہے کتنا جھاڑا ہوتا ہے یہ باتھ میلن تو باتھ میں بھی نہ آئے کھری بات کھوٹی بات اس کا دانا دیکھا ہے تم نے دانا دیکھا ہے تم نے اس کا دانا رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اتنا چھوٹا کہ اگر ہتھیلی میں رکھو نا تو یوں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ناک کے ہوا سے اڑ جاوے اتنا چھوٹا اتنے چھوٹے دانے میں اتنا جاڑا جھاڑ دکھتا ہے کہیں پر اس کے اندر اتنا جاڑا جھاڑ ہے کہ یہ ملاقاتوں میں ایسے جاڑے جاڑے جھاڑ ہے हम वो नहीं कर सकेंगे जो ये झाड़ उगा देगा, ऐसे झाड़। तो शैतान जो है ना ऐसे झाड़े झाड़ कमाने नहीं देता। हमारे बुजुर्ग थे इंतकाल होगा, वो यूं कहते थे शैतान को अदावत है दावत से। वो इकला इकला अपना कर ले कोई वादा नहीं, वो जो करके मर जाना वो मर जा रहे, फिर उसका कुछ कहीं अधूरा निकलेगा कहीं कुछ अधूरा निकलेगा वो चल जाएगा। पर ये लोगों को तैयार करके कमा कर नहीं जाना चाहिए। अगर कमा कर गया ये मर जाएगा तो भी दफ्तर बंद नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे जो लोगों को लगा कर जाते उनके दफ्तर बंद नहीं होते। कैसे बंद नहीं होते हैं? अरे भाई मैंने इसको लगाया, इनको लगाया, इसको लगाया, इसको लगाया। अभी जितना करेंगे वो सब मेरे खाते में आएगा। के जरिया कौन बनाए? मैं बनाऊं। देखो ना हजरत उमर कितने बड़े भारी भरकम आदमी, पठान जिस गले से गुजर जावे शैतान भाग जावे, इतना भारी भरकम आदमी। कितना काम किया, 10 साल की हुकूमत ऐसी तेज चलाई कि सहाबा फरमाते इस एक जुमा हम इस शहर में पढ़ते थे, दूसरे जुमा दूसरे शहर में पढ़ते, इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला। इतना बड़ा काम किया और वो इतने बड़े बने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? तो सारा उमर के खाते में जाएगा। उमर के खाते में तो जाएगा, उमर को तो सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले किसके खाते में जाएगा? अरे बोलो, जिसने उमर पर मेहनत की थी उसको कौन जानता है? ये तो हमने फजल अमल में पढ़ा कि बहन ने तमाचे खाए थे तो खबर पड़ी, वरना हमको भी पता ना होता। तो वो बहन ने तमाचे खाए थे तो उससे उमर को तो बाद में मिलेगा, उससे पहले किसको मिलेगा? बहन वो नहीं कर सकी जो भाई ने किया, लेकिन भाई ने जो किया वो सब किसके खाते में जाएगा? ये 2.5 घंटे में ऐसे हीरे आपको मिलेंगे। इसलिए शैतान जो है ना 2.5 घंटे नहीं लगाने देता। आप तय कर लो उसका मुकाबला करना है। अल्लाह कुरान में फरमाते उसका मुकाबला करो, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा कि वो जो तुमको कहता है उसकी काट कर डालो, यूं कहते हैं। तो हम काट नहीं करेंगे उसकी। अरे बोलो नहीं करोगे? तो आज तुम में से कौन कहता है कि हम घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाएंगे? हम इंसानों को कमा कर जाएंगे। क्या कमा कर जाएंगे? वायरिंग कर देंगे। ये 2.5 घंटे ताकतवर मेहनत है इंसानों को कमाने की। करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेगा? घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाओगे? ये आप कितने साल से सुनते हो? बोलो भाई कितने साल से सुनते हो? 10 साल से। अब तक कितने घड़ी देखकर 2.5 घंटे लगाते हैं? जरा हाथ उठाओ। एक देख लिया। 10 साल का नतीजा, 10 साल का नतीजा एक। मैं इन्ना लीला पढ़ू कब? सबने इज्तिमाई पढ़ लेते हैं जी। मैं आपकी तरफ से पढ़ लू या हम सब इज्तिमाई पढ़ लें? ठीक है, इस मरतबा दिन अल्लाह पढ़ते हैं, मगर आइंदा साल हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे कि सब 2.5 घंटे वाले हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे कि इन्ना लिल्लाह पढ़ोगे? कौन कौन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़वाएगा? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मजा आ जाए। इंशाल्लाह हम दुनिया से जाएंगे ना, बांझ नहीं मरेंगे। बांझ जानते हो किसको कहते हैं? मौलाना उमर साहब कहते थे बांझ नहीं मरना। बांझ ऐसी औरत को कहते हैं जो अकेली थी निकली मर गई, न कोई रोने वाला न धोने वाला, न मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद खत्म, किसा ही बुरा हो गया। ऐसे थोड़ी पढ़ना मरना है, तो कैसे मरना है? जब हम मरे तो मजे से मरे। हमारा बियारण सब जगह हो गए, जब बस्ती में रहे तो सब जगह मेहनत, और वार्षिक चिल्ला गया, कभी आसाम कभी ओडिशा कभी बंगाल कभी मणिपुर कभी मिजोरम कभी नागालैंड कभी नेपाल। ओहो हो, जब कयामत में उठे ना तो हमारे झंडे के नीचे आसामी लोग चले, लोग पूछेंगे यार ये आसामी इनके नीचे क्यों? भाई हम चिल्ला गए थे वहाँ। अच्छा, और ये बंगाली क्यों? हम चिल्ले में बंगाल भी गए थे, और ये मिजोरम वाले हम वहाँ भी गए थे, और ये मणिपुर हम वहाँ भी गए थे। तो सारों को झंडे के नीचे लेकर जाना है। हमारा टोला बड़ा होना चाहिए। छोटे टोले पर जाओगे या बड़े टोले के साथ जाएंगे? मौलाना उमर फरमाते थे करते करते मरना है और मरते मरते करना है। अगर अच्छा करोगे इंशाल्लाह मौत भी अच्छी आएगी। कल हमारे बुजुर्ग थे इज्तिमा में, दुआ के टाइम में चले गए इज्तिमा में। 3 गाड़ियां मंगवाई उनको घर भेजने के लिए, घर चले जाओ तो कहने लगे मैं तो यहीं मरूंगा, और वहीं मर गए। भाई मरना तो है ही, अच्छा मरना दे दे अल्लाह, कमाल हो जाएगा। करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन करेगा? और कोशिश करो घर में बैठकर बात करें। घर में बैठकर बात करने से बहुत नफा होता है। उस घर के अंदर जो है ना गलत चीजें उसके ऊपर आने चल जाती है। एक आदमी घर में बैठकर जब बात करता है ना तो उसके घर के सारे मर्द हमारी फिक्रों में शरीक हो जाते हैं। ये 5 कामों में ताकतवर काम 2.5 घंटे हैं। تم اس میں پہلے گشت کی تشکیل کر سکتے ہو, دوسرے گشت کے لیے تیار کر سکتے ہو, تین دن کی تشکیل کر سکتے ہو, چلوں کی تشکیل, سارا اس سے جڑا ہوا ہے. ڈھائی گھنٹے یہ چکی کا وہ پارٹ ہے جس پر پوری چکی گھومتی ہے. ڈھائی گھنٹے اگر تم نے نہیں لگائے تو گھنٹی بند ہو جائے گی, آٹا چاروں طرف نکلے گا. پھرے گی تو تم پھرو گے, چلے کے لوگ ملیں گے, چار مہینے کے ملیں گے, تین دن کے ملیں گے, بچوں کو مکتب کے لیے بات کرو گے, مسورت کی بات ہوگی. تو یہ چکی پھرتی ہے تو چاروں طرف آٹا نکلے گا. ڈھائی گھنٹے بند ہو گئے تو آٹا نکلنا بند ہو جائے گا. ڈھائی گھنٹے کا مطلب چکی پھر رہی ہے. ہاں, اور گھر میں بیٹھ کر بات کرو. کس میں بات کرو؟ اور یہ مت سوچو کہ گھر چھوٹے چھوٹے ہیں. ارے بھائی, اسی گھر میں بیٹے بیٹی کا رشتہ لے کر آتا ہے تو وہ کہاں بٹھاتا ہے؟ روڈ پر کیا گھر میں؟ گھر میں. ہم اپنے عقل سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے وہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ بھائی, چھوٹے گھر والا بھی رشتے والے کو گھر میں بٹھا, اس کا نفع بہت ہے. ان کے سارے مرد آپ کی فکروں میں شریک ہو جائیں گے. اگر آپ نے گھر کے باہر بات کی, ایک آدمی اس کا گھر کا وڈیل ہے, اس سے تم نے بات کر لی تھی, ایک سے بات کی, اس گھر میں پانچ چھوکرے ہیں, وہ پانچوں تمہاری فکروں میں شریک نہیں رہیں گے. وہ گھر میں عورتیں ہیں, اور عورتوں کو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ وہ اچھے اچھے عقل والوں کو اڑا لے جاتی ہے, آدھی عقل کی, پن سب کو نچاتی ہے. آپ دیکھ لو کتابوں میں آئے, وہ آدھی عقل کی ہے نا, ایسا تو تین ہے وہ عقل, پن عقل والوں کو وہ لے جاتی ہے. یہ بھی ساتھ میں ہے, وہ ہے تو آدھی عقل کی مگر عقل والوں پر لگام اس نے ڈالی ہوئی ہے. اور علامت قیامت میں یہ ہے, آخر زمانے میں تو مردوں کا قبلہ عورتیں بن جائے گی. بغیر قبلے کے نماز ہوتی ہے؟ ہاں بولو نا. شاید تو شاید میاں کو گھر میں پوچھنا پڑے گا کہ کیسی ٹائلس لگانی ہے, کیسا فرنیچر لانا ہے. حجن پاس کرے تو شاید بھائی کی چلے گی, ورنہ نہیں چلے گی. آپ فرنیچر کی دکان پر جا کر دیکھ لو, حجن خریدنے جاتی, اس کو کیا لینا دینا فرنیچر سے, پر وہ پاس کرے تو ہی. ہاں, ٹائلس وہ خریدنے جاتی ہے, نل خریدنے وہ جاتی ہے, حاجی صاحب کے کپڑے بھی وہ خریدتی ہے. حاجی صاحب کے کپڑے, میں نے ایک جگہ کہا کہ کیوں ایسا کر دیا, تو وہ ایک حاجی صاحب بیچ میں بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے وہ یوں کہتے ہیں تم کو سمجھنا پڑے, تیرے کو پسند کر کے وہ لایا ہے اور تم اس کا پسند کرنے جاتا ہے. اس کو پسند کر کے تو حاجی صاحب لائے, اب وہ حاجی صاحب کا سب پسند کرتی ہے. بولا ایسا ہی ہو گیا؟ ارے بولو ایسا نہیں ہو رہا ہے بھائی. تو اگر وہ عورت نہیں سمجھی تو تمہارے اس مرد کو سمجھائی ہوئی بات گھر میں چلے گی؟ ارے بولو چلے گی. اور اگر وہ سمجھ گئی تو جی, ابھی ہم جوڑ زونوں کی جماعتوں میں سے خریداری سنتے ہوئے آتے ہیں, تو ایک جماعت نے خریداری سنا ہی کہ ہم نے مردوں کو بلایا, کوئی آیا ہی نہیں. پھر مستورات کا جوڑ کیا, تو وہ مستورات نے مغرب میں بھیجا, عشاء میں بھیجا, فجر میں بھی بھیجا. جب مسترد میں جوڑ ہوا تو تینوں ٹائم آئے, ورنہ اس سے پہلے آئی نہیں رہے تھے. ان عورتوں کو تو معمولی چیز نہ سمجھو, بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. تو جب تم گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے نا تو ان کے کان میں آواز پڑے گی. لیکن دیکھو, گھر میں بیٹھ کر بات کرو, چھ نمبر کی بات کرو, کوئی باہر نہ نکلے, اور کہیں اور بھی ہمیں چھ نمبر کے باہر نہیں جانا, اور اتنا زور سے بولو مستوراتی تمہاری بات سن لے. اس میں پھر چھ نمبر کی بات میں تشکیلی بات ہم آخر میں کریں. اکثر ہم کیا کرتے ہیں, جاتے ہی او بھائی وہ مسجد میں چلنے کی جماعت جا رہی تھی تو ساتھیوں نے آپ کے لیے بھی سوچا ہے, کیا رائے آپ کی, وہیں سے شروع کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے تشکیل کون سے نمبر پر ہے؟ چھٹے نمبر پر. اور ہم اس کو کون سے نمبر پر بولتے ہیں؟ تو ہم الٹا کر دیتے ہیں. تو ہم آپ اس کو کون سے نمبر پر بولے؟ اس کو ایمان کی قیمت سناؤ. ایمان کی قیمت سنا سے اس کے دل میں ایمان کے بیج پڑ جائیں گے. بیج کیسے بیج پڑتے ہیں میں بتاؤں. ابھی ہم لوگ کے جماعتوں کی قرضداری سن رہے تھے, ایک علاقے میں امریلی میں ایک علاقے والے ملنے آئے. انہوں نے کیا سنا ہے بتایا, ہم پہلی بار اس طرح کے دھارمک سمیلن میں آئے ہیں, ہم نے اس سے پہلے کبھی کوئی دھارمک سمیلن میں شرکت نہیں کی. اچھا, آپ کیوں آئے؟ کہ زونوں کی جماعت والے آئے تھے, پگ پڑا یاترا والے, تو ان کو ہم نے آسرا دیا تھا. اچھا, پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے ہم سے یہ بات کی, یہ بات کی, اور یہ آنے کی دعوت دی تھی. تو وہ بیج ان کے دل میں ایسے پڑے کہ جماعت کے آنے کے بعد دوسرے لوگ ان کے پاس گئے. ان لوگوں نے جا کر ان کو کہا کہ تمہارا تم اصل مسلمان نہیں تھے, پہلے تو تم یوں تھے, یوں تھے, یوں تھے, تو ہمارے پاس آ جاؤ. تو انہوں نے پوری بات سننے کے بعد کہا, ایک بات سنو, ہم مسلمان ہیں, چاہے ہم کو کچھ آوڑتا نہیں ہے, ہم نماز بھی نہیں پڑھتے, کوئی کام ہم نہیں کرتے, ہمیں آوڑتا ہی نہیں ہے, پر ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام پر مرنا چاہتے ہیں, اسلام آئندہ کبھی ہمارے پاس مت آنا. تو ان کو کیسے پتا چلا؟ تو پتا چلا یہ جماعتوں نے ان کو سمجھایا کہ اسلام کتنی بڑی چیز, ایمان کتنی, یہ بھی یاد ہوا آپ ڈھائی گھنٹے میں ایمان سمجھاؤ ان کو. ابھی دیکھو ہمارے وہاں نماز کتنی فیصد کم ہے. کل پرسوں مشورے میں آپ میں تو نہیں تھا حضرت تھے, تو اس میں کہیں 25%, 20%. ابھی اتنا بڑا فریضہ ہمارے محلے میں زندہ نہیں ہے, یہ اس کی عظمت بولو. اور بچے کتنی بڑی امانت ہے, بچوں کو دینی تعلیم دینا, مستورات, ایک لڑکی کا بننا پورے نسل کا, یہ پورا سمجھاؤ گھر میں. اگر اس طرح سے تم نے کیا تو پورے گھر میں وائرنگ ہو جائے گا. پھر اس کے آخر میں بھائی اتنا مبارک دن سیکھنے کے لیے جمان کا چلو, تو اس سے انشاءاللہ تمہارا بڑا کام ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. اور ان سب چیزوں میں تمہیں لوگوں کے عیب سامنے آئیں گے. لوگ اپنی کارزریہ تمہارا میرا ایسا ہے, میرا اس دل کو جو ہے نا سمندر بنا لو دو چیزوں کے لیے. کسی کی کوئی چیز برائی ہمارے سامنے آئے کسی کو کہنا نہیں ہے, وہ تمہیں اپنا ہمدرد سمجھ کر کہتا ہے, اب اس کو کسی کو کہنا نہیں ہے. دوسرا ایک ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو گرے پڑے ہیں. دیکھو کوئی آدمی بزرگ بن جاتا ہے ولی تو اس کی خدمت میں تو سبھی جاتے ہیں, وہ مر جاتا ہے تو بھی جاتے ہیں. بھائی درگاہوں پر لوگ نہیں جاتے مر گیا تو, زندگی کے پاس بھی جاتے ہیں. لیکن ایمان والے کو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں عزت کرنا سیکھنا ہے. کیسے؟ تو یہ کچے پکوں کی خوشامد کرو, یہ کچے پکوں میں تمہیں زوردار زوردار لوگ ملیں گے. سمجھ رہے بات آپ؟ اور اگر ان کی کوئی بات سامنے آئے نا تو ان کو برداشت کر جاؤ, ناراض مت ہو جاؤ, ریسا مت جاؤ. ریسا نے کام چھوکریوں کا ہوتا ہے. کس کا بولو ذرا؟ میری مسجد میں کوئی آتا ہے دوسری مسجد کا میں سمجھ رہا ہوں یہ رسائلہ آدمی ہے. کیسا ہے بولو؟ مجھے ایسا کیوں کہہ دیا, یہ ایسا کیوں کرتا ہے, تو یہ چھوکریاں کرتی ہے. ذرا بولو کون؟ ارے بولو کون؟ چھوکریاں کرتی ہے. تو ہم چھوکریوں جیسا نہیں بنیں گے, ہم نہیں رسائیں گے, ہم رسا جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی. بھائی تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ ارے بولو اللہ کے لیے. تو جب ایسی کوئی بات ہو تو برداشت کر جاؤ. ایک شاعر کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کیف پیدا کر سمندر کی طرح. کیف کہتے ہیں پوزیشن, کیف کہتے ہیں پوزیشن, اپنا پوزیشن کیسا بناؤ. کیف پیدا کر سمندر کی طرح, سمندر مطلب سمندر, سمندر مطلب سمندر. کیف پیدا کر سمندر کی طرح, وہ ساتے سمندر کتنا وسیع, نظر بھی نہیں جاتی. وہ ساتیں گہرائیاں, وہ کتنا اڑا ہے پتا ہی نہیں کتنا اڑا ہے. وہ ساتیں گہرائیاں خاموشیاں, شانت واتاورن. کیف پیدا کر سمندر کی طرح, وہ ساتیں گہرائیاں خاموشیاں. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. دریا کہتے ہیں اردو میں جو پانی چلتا ہے نا, ندی کھاٹ کھوٹ کھاٹ کھوٹ کھاٹ کھوٹ شور کرتی ہوئی جاتی ہے ندیا. سمندر خاموش ہوتا ہے, موجیں جو ہوتی ہیں وہ کناروں پر آتی ہے. تو یہ موجیں جو تھی موجیں, ان کو سمندر کیا کہہ رہا تھا؟ دریا کی موجیں. دریا کہتے ہیں اردو میں بہنے والا پانی. تو کیا کہہ رہا تھا پتا ہے؟ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت. سمندر خاموش تھا اور ندی بہت شور کر رہی تھی. تو سمندر نے اس ندی کو خطاب کر کے یوں کہا کہ تو بہت شور کرتا ہے, تو بہت شور کرتا ہے. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جس کا جتنا کلیجہ اندر جگر بڑا ہوتا ہے وہ پی جاتا ہے. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکون جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. چھوٹے برتن والا چھلک جاتا ہے. شانت پانی میں
ایک کپ میں چائے لے لو تو برابر एक्चुअल इन्हें हुआ तो सीधा मानस को धक्को वायु है जो वायु
तो चाय भी रही સમજા એક માણસ ચાય નો કપ લઈને ઉભો હતો બીજા માણસ નો ધક્કો વાગ્યો ધક્કો વાગ્યો એટલે ચાય વેરાઈ ગઈ તમને કોઈ પૂછે કે ચાય કેમ વેરાઈ શું થયું કેમ ચાય વેરાઈ કો ધક્કો વાગ્યો બોલો ચાય ભાઈ કેમ કેમ વેરાઈ ધક્કો વાગ્યો બોલો ભાઈ ચાય કેમ વેરાઈ ભાઈ કેમ વેરાઈ કન્ના ખોટી વાત છે તો કેમ વેરાઈ પછી કહેના કપમાં ચાય હતી એટલે વેરાય ચાય ના હોત તો ના વેરાવ તો કપમાં જે હોય એ વેરાય અચ્છા એમાં દૂધ હોત તો શું વેરાવ એમાં પાણી હોત તો શું વેરાવ એમાં દારૂ હોત તો શું વેરાવ એમાં જે હોય એ વેરાય આપણને બી ધક્કા લાગે કોઈ દિવસ મસ્જિદ વર જમાત નો ધક્કો કોઈ દિવસ સાથી નો ધક્કો કોઈ દિવસ બાયડી નો ધક્કો કોઈ દિવસ દોસ્તો નો ધક્કો હવે અંદર શું છે એ વેરાશે સમજો તમે અંદર ક્યાં હે વો ગિરેગા ધક્કે તો લગેંગે જીવન ધક્કો કા નામ હે જીવન કિસકા નામ હે કભી સાથી કા ધક્કા કભી મસ્જિદ ઓર જમાત કા ધક્કા કભી જિમ્મેદાર કા ધક્કા આપ દેખના યે કિસકે કપ મે સે ક્યા ગિરા ધક્કે તો લગેંગે લેકિન અબ ગિરતા ક્યા હે વો દેખના હે જિસમે ચાય હોગી વો ચાય ગિરાયેગા જિસકે અંદર દૂધ હોગા વો ઓર જિસમે શરાબ હોગી વો ઓર જિસકે અંદર જમઝમ હોગા વો ઓર જિસકે અંદર પ્યાર હોગા વો પ્યાર અબ ધક્કે તો લગેંગે લેકિન ગિરતા ક્યાં દેખના હોય તો હમારા અંદર બેઠવાની શક્તિ આવી એ ક્યારે દેખાશે ધક્કો વાગશે ત્યારે કે રિસાઈ ગયા યા વેઠી લીધું આમાં કેટલા કેટલા રિસાશે જી કોણ કોણ રિસાશે તો રેગ્યુલર કરશે ઇન્શાલ્લા બહુ બધી અમારી કમાઈ હો જાયગી એટલે તય કર લો ઘરો મેં બેઠ કર વાત કરની ઓર ધોકા નહીં ખાના લોકો ક્યાં સમજતા પતા હે હમ ફજર મેં મુલાકાતો મેં જાઓ કોશિશ કરો ફજર મેં મુલાકાતો મેં જાઓ કિસ મેં જાઓ આપ ભી ફારિગ હોતે હો લોગ ભી ફારિગ હોતે હૈ અપને ઘરો મેં હોતે હૈ ફ્રી હોતે હૈ રાત કો ભાઈ ને સુનાયા ઉનકો ભી ખાના હોતા હૈ હમકો ભી ખાના હોતા હૈ ફજર મેં કોઈ ખાના નહીં હોતા ફ્રી હોતે હૈ લોગ આરામ સે બાત કર સકતે હો એક બાત હો સકતી હૈ ફજર મેં બસ ખાલી આપકો એસા લગ સકતા હૈ કે ફજર મે લોગ સોએ હુએ હોતે હૈ આપકો એસા હો સકતા હૈ બોલા એસા હો રહા હૈ નહીં હો રહા હૈ કિસકો કિસકો એસા હો રહા હૈ કે રાત કો સુબહ સોતે હૈ લોગ એસે દિલ એસે કિસકે કિસકે દિલ જરા થોડા અચ્છે સે ઉઠાઓ કે લોગ સુબહ મે સોતે હૈ દેખો આપ પીછે દેખો સબકા હાથ દેખો અરે શાયદ દેખો ના પીછે મુડકર જરા ઉઠાઓ અક્સર કો એસા લગતા હૈ કે લોગ સુબહ મે મગર યે ધોકા હૈ મગર યે ક્યા હૈ બોલો તો કેસે કહેતે હો ધોકા હૈ તો ફિર હકીકત ક્યા હૈ મે બતાઉં આપકો સહી ક્યા હૈ બતાઉં ये मजमे में फजर के बाद कौन कौन नहीं सोता वो जरा हाथ उठा करो फजर बाद जो जो नहीं सोते वो हाथ उठाओ अच्छे से उठाओ अच्छे से अच्छे से जरा देखो पीछे देखो सब एक दूसरे के हाथ देखो धोखा खुला कुछ आप क्या समझ रहे थे कि फजर के बाद लोग ये 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 सोने वालों के हाथ उठे कि जागने वालों के देख लिया आपने मजमे में भी ऐसा ही होता है सब नहीं सोते अब धोखा खुल गया कब भी ऐसा बोलोगे कि फजर बाद लोग सोते हैं देख लिया आपने देख लिया आपने न सोने वाले तो लोग फजरबाद सोते नहीं है आप फजरबाद इसके माहौल बनाओ चलने फिरने का इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फजर में सुबह सुबह में अल्लाह ने बरकत रखी इस उम्मत के लिए इंशाल्लाह खैर वजूद में आ जाएंगे फजर में ही शुरू करो फजर में चलोगे फिरोगे दस्तक दो के दरवाजे पर वो निकल जाए बहुत अच्छा नहीं तो उसके बगल वाला नहीं तो उसके बगल चलते रहो आपका चलना बेकार नहीं जाएगा ठीक है इंशाल्लाह तो ढाई घंटे मजबूत करोगे और घर में बैठकर बात करोगे कौन कौन घर में बैठकर बात करेंगे उनसे तकाजा करो आपने हाँ आपके घर में बैठकर बात करना चाहते छह नंबर की बात करो मर्द सुने इस तरह बात करो औरतें भी सुने इस तरह ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह और उसी में तश्किल करो तो चिल्ले के भी आदमी मिलेंगे तीन तीन दिन के भी और कितने दिन में मुलाकात पूरी करनी है कौन कौन नियत करता है कि हम आइंदा 15 दिन का टारगेट बनाएंगे वाह 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 माशाल्लाह और छलक तो नहीं जाओगे वेरा तो नहीं जाओगे कौन कौन वेरा जाएगा ये भाई का क्या नाम है ये चश्मे वाला आप ही क्या नाम सोहेल वेरा तो नहीं जाओगे छलक तो रिसाई तो नहीं जाओगे चलो ठीक बहुत जोरदार अल्लाह बहुत मुबारक रखफर ये बहुत ध्यान से सुन रहे थे इसलिए मैंने उनको पूछा ऊँगते नहीं है मैंने सुबह से देखा यूं आंखें कर पक्के तो जो अच्छा सुनता है वो अच्छा काम करता है जो अच्छा सुनता है वो एक एक बुजुर्ग को मैंने देखा कि वो यूं करके सो रहे थे अभी मैंने पूछा सोते तो भाई तो उन्होंने कहा नहीं आप साथ समझ रहे आप ऐसा मत पूछ रहे कि कौन है जिसके आपको अल्लाह ने छुपाया उसके आपको हम नहीं खोलेंगे भाई जिसके आपको किसने छुपाया
तो इसके ऐप को मैं भी नहीं खोलूंगा कि वो फला बुजुर्ग थे, ठीक है, पर वो अभी जाग गए। अच्छा चल आ जाओ, अब कौन आएंगे? अच्छा भाई ये बहुत अच्छा हंसते, आप आ जाओ, ये बहुत अच्छा हंसते है ना, आप आ जाओ। अच्छा भाई आपके वहाँ दोनों तालीम और गश्त कैसे होते हैं? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ हो, आप नाराज हो गए, आप नाराज हो गए। अच्छा भाई आपके मस्जिद में गश्त और तालीम कैसे होते हैं जरा बताओ। बंदी बंदे सभी हो। अच्छा भाई सुनो जरा, ये आप सो नहीं इसके लिए थोड़ा सा है ना। अच्छा दोनों गश्त और दोनों तालीम कैसे करते हैं?
हमारा जो है 10 दिन पहले मशवरा हो जाता है और मशवरे के अंदर दो चीजें तय करते हैं, एक ऐलान और एक जो है मजा लेकर, और उसके बाद जो है मुलाकात की जोड़ी जाती है, तो पूरे दिन जो है इसकी दावत देते हैं, दावत जलाते हैं।
अच्छा
और मगरिब और ईशा के दरमियान गश्त होता है, तो दिन पूरा दिन इसकी मेहनत होती रहती है, और मगरिब से जब गश्त ऐलान होता है और उसके बाद सजाले गश्त होते हैं, उसके बाद जो है वो दरमियानी बात और ईशा के बाद की बात।
कितने देर का गश्त होता है आपके मस्जिद में?
हमारा 45 मिनट।
माशाल्लाह कितने साथी होते हैं?
हमारा तकरीबन 60-70 साथी होते हैं।
60-70 माशाल्लाह वाह वाह। और आपके मस्जिद के अतराफ में मकानात कितने हैं?
हमारे मस्जिद में 170 मकान है।
आपके 100% मुलाकातें गश्त के दिन पूरी हो जाती है?
सर ऐसा होता है कि 4 हल्के बनाए हुए हैं हमारी मस्जिद में, तो जिस दिन ज्यादा साथी होते हैं 60-70 साथी होते हैं उस दिन 4 हल्कों में गश्त होता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह।
और कभी कम साथी होते हैं तो कभी 2 जमात कभी 1 जमात।
अच्छा अच्छा, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरे मकानात लेते हो, ऐसा ही होता है?
हाँ ऐसा होता है, लेकिन जब जमात साथी ज्यादा होते हैं
तो साथी कब ज्यादा होते हैं कब कम हो जाते हैं?
इन्हें अक्सर जो है ऐसा होता है कि साथी जो है 50 के करीब होते हैं।
आप इसको कह रहे हैं कितने देर अक्सर ऐसा होता है जो है ना, तो अक्सर ऐसा होता है आप ऐसा कहते हैं जो है को बीच में से निकाल दें, समझे बता, आप जो है ना जो है को बीच में से निकाल दें, ठीक है, ताकि शॉर्ट टाइम में पूरा हो जाए। हाँ आप फरमाए।
ज्यादा साथी होते तो चार जमाते में
ज्यादा साथी कब होते हैं और साथी कम कब होते हैं?
वो ऐसा होता है वहाँ के कोई
ये क्यों हंसते हैं पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, हम अक्सर हमको ये टाइप भुगतना पड़ता है, हम ये पूछते हैं आपकी मस्जिद में कितने साथी होते हैं, ठीक है, अब उसका जवाब ये होगा 50, 60, 40, तो जवाब पूरा हो गया, हम जो कहेंगे उसको दोहराता है आदमी। हम ये पूछे आपकी मस्जिद में कितने साथी होते हैं, तो कहेगा हमारी मस्जिद में इतने साथी होते हैं, समझ लो वो पूरे चैप्टर को पूरा दोहराता है, तो वो हमारा डबल टाइम लेता है, कितना लेता है उसको जवाब क्या देना है? अबे हम पूछे आपकी मस्जिद और जमात में कितने बैठते हैं, वो कहेगा 50, 60, 30, 40, वो कहेगा हमारी मस्जिद और जमात में 40 बैठते हैं। बात समझे आप, उसका जवाब कितना होना था? 10, 20, 30, 40, या फिर दोबारा उसको दोहराना चाहिए था, अब बात समझे? चलो बहुत अच्छा है, अब समझ गए कैसे जवाब दे दो, कब साथी ज्यादा होते हैं कब साथी कम होते हैं?
मैं कह रहा हूँ साथी जो है वो ऐसा साथी कम ज्यादा होते रहते मौलाना, फिक्स होता नहीं है कि
एक बात ये हो सकती है जवाब आपका कि भाई हम जब गश्त की मेहनत करते हैं तो ज्यादा होते हैं और कब जब गश्त की मेहनत नहीं होती तो कम होते हैं, यही होता है
हमारा जो है असल रिश्वा के लिए गश्त होता है, रिश्वा के लिए गश्त होता है और छुट्टी का माहौल होता है, उसके अंदर से आगे भी सोचते
हैं। अच्छी बात है, शुरू है और तालीम
जो ईशा के बाद होती है।
अच्छा भाई चलो अब समझा गए है ना। अच्छा कौन कौन सोया है जरा बताओ। अच्छा तालीम कितनी देर होती है?
तालीम जो 10 मिनट होती है।
और कौन सी किताब से होती है?
फजल अहमद फजल दफ्तर।
माशाल्लाह सारी किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। अच्छा और कितने घरों में तालीम होती है?
घरों के अंदर तकरीबन जो है 65 घरों में होती है। 65 घरों
आपको जो है बहुत याद है सब इस पर हंसते हैं। अच्छा ये 65 घरों में कब से होती है? उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई
तो होती है।
अच्छा ये आखिरी ये 65 कब तक कब से है? 5 साल से है, एक घर भी नहीं पड़ा। ये तो बहुत सुस्ती है। अच्छी बात, तशरीफ रखें जो है आप, तशरीफ रखे हैं है ना? ऐसा होता है, सब मोड़ में आ गए आपकी वजह से, है ना? अच्छा भाई सुनो एक बात। अच्छा भाई देखो, ये तो एक फिक्र की बात है। मैं इनसे दूसरा गश्त पूछ गया। अच्छा दूसरा गश्त आप जो करते हैं जिस मस्जिद में, कितने वक्त तक के लिए करते हैं?
1 महीने 2 महीने 2 महीने
के लिए। आपने कोई ऐसा इलाका कि जिसमें दूसरे गश्त के जरिए से कोई काम शुरू हुआ हो? कोई नहीं। आप जहां मस्जिदार जमात है ऐसी मस्जिद में दूसरा गश्त करते हैं, या जहां दूसरे गश्त में जाते हैं वहां मस्जिदार जमात नहीं है?
याद है हमारा
नहीं, वहाँ मस्जिदार जमाते, मैं इतना पूछ रहा हूँ। अच्छा कमजोर है तो आप हमेशा 2-2.5 महीने में लेते हैं, तो जितने देहात आप बदल ले जाते हैं ऐसे कमजोरी लेते हैं, या जहाँ मस्जिदार जमात होती है ऐसे लेते हैं? मतलब जहाँ मजबूत है वहाँ नहीं जाते हो। तो साल भर में कोई ऐसा इलाका कि जो आपकी मेहनत की बरकत से खड़ा हुआ हो? नहीं। अच्छा आप गश्त के अलावा उस इलाके में मेहनत के लिए जाते हो हफ्ता भर? नहीं, यू रेगुलर नहीं जाते, गश्त के अलावा बिल्कुल नहीं जाते। अच्छा आप दूसरे गश्त का हदफ आपका क्या है? आप दूसरे गश्त में आपका टारगेट क्या है? उस बस्ती में जाकर गश्त कर लेना, एक तो ये, और एक ये उस मस्जिद को खड़ा कर देना है। क्योंकि गश्त करने का तो अमल ये वक्त भाई, आप जाओ गश्त कर लो, और खड़ा करने का अमल ये होता है कि लगातार मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे मतलब भाई? देखो ये बात है कि जिस तरह हजरत ने ये तफसील से बात सुनी, अपने मोहल्ले की मेहनत करने की, अपने मोहल्ले की मेहनत में ये दोनों गश्त और तालीम जो है ना, ये बुनियादी अमल है। हमारा मजमा, हमारा हदफ ये हो कि रोजाना मस्जिद की तालीम सुने। आप ये फजल अमल, फजल सदकत को क्या समझते हो? इसने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये मौलाना इलियास साहब ने हजरत शेख के पास लिखवाई है। इसमें जो है ना पांचों भाग हमारे दीन के 5 चीजें हैं, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाकियात। इन पांचों में ईमान वाले को कैसे रहना चाहिए उसकी तफसील लिखी है। जब वो सुनाई जाएगी तो मजमा उस दीन की तरफ मुतवज्जे होगा, फजाइल से अपनी तवज्जो देता है। इसलिए हमारा हदफ ये होगा हमारे मोहल्ले में तालीम ऐसे वक्त में हो जिस वक्त में ज्यादा से ज्यादा मुसल्ली बैठ सके। बात समझ में आ रही नहीं है? और कोशिश करो 20-25 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता तालीम को ले जाओ, और उसके लिए ऐसा नहीं कि एक छलांग लगाकर 5 मिनट और 25 मिनट कर दो तो लोगों में उत्ताहट पैदा हो जाएगी। क्या करो, 5 मिनट तालीम है, महीने में 1 मिनट बढ़ाओ, महीने में 1 मिनट तो भारी पड़ेगा। 1 महीने तक में 6 मिनट हुई, 6 महीने के बाद 1 महीने के बाद 1 मिनट बढ़ाओ तो 60 मिनट लौट जाएंगे। तो 6 महीने के आधी हो गए, 6 मिनट के आधी हो गए थे, आप 1 मिनट बढ़ाओगे तो भारी नहीं पड़ेगा। फिर 60 मिनट के आधी हो गए, फिर 1 मिनट बढ़ा दो। 1 महीने तक 60 मिनट चली, 60 मिनट चली, 1 मिनट बढ़ाओगे भारी नहीं पड़ेगा। फिर 7 के बाद 8, बाज मस्जिदों के अंदर 20-25 मिनट तक लोग पहुंच गए। हमारे कालू ललका है, उसमें हमारे भाई शरीफ वगैरह, उनके अक्सर मस्जिदों में आधे घंटे तक तालीम वो पहुंच गए। एक एक मिनट बढ़ाते 2 साल में आप आधे घंटे तक पहुंच जाओगे। उसका फायदा ये होगा कि आधा घंटा मजमा जब आधे हो जाएगा तो हम सारी किताबों में से थोड़ा थोड़ा इनको सुना सकेंगे। और दूसरा, ऐसी नमाज के बाद हम करें जिसमें हमारा मजमा बैठे, क्योंकि आपने घर घर जाकर बात की है, अब जो बातें उन्होंने सुनानी है वो मस्जिद में है। तो हमारा हदफ ये होगा हमारा मजमा तालीम में बैठे, और यही तालीम हमारे घरों में हो। देखो भाई नबी का सुनाया, पिछले 5 साल से 65 मकानों में हो रही, एक मकान नहीं बढ़ा। और ये तालीम घरों में नहीं हुई तो घरों में दूसरी तालीमें तो सारी होती है, बगैर तालीम की किताब लाए हो जाती है। कभी बेटा तालीम कर देता है, कभी अब्बा, कौन सी तालीम? 2000 वाली तालीम। हाँ, दुनिया भर के चर्चे हमारे घर में होते हैं, अगर नहीं होते तो अल्लाह रसूल के नहीं होते। महाराज जी फरमा देते हर घर में तालीम शुरू कर दो, ये तुम्हारे घरों के वो सुराख बंद कर देंगे जहां से बेदीनी दाखिल होती है। तो घर में बैठकर तालीम को इतना बोलो कि उस आदमी को ऐसा महसूस होने लगे कि अगर तालीम मेरे घर में नहीं हुई तो मेरे घर में तो आग लग जाएगी। इसको इतनी अहमियत से उसको समझाओ और नियत करवाओ। जो लोग नियत करें ना, नियत करें, थोड़े दिनों के बाद क्या रास्ते में मिला तो खैरियत पूछा, क्या भाई खैरियत, तबीयत ठीक? फिर वो तालीम कहां तक पहुंची, ایسا نہیں پوچھنے کا شروع کی کہ نہیں وہ نہیں, کیا پوچھنے کا, وہ جو تعلیم کی اپنی بات ہوئی تھی وہ کہاں تک پہنچی, تو کہے کہ بھائی 5 منٹ تک ہو رہے, واہ واہ ماشاء اللہ. اور بعض یہ کہیں گے یار ابھی تو شروع ہی نہیں کیے. اچھا تو یہ نہ پوچھو کیوں, یہ نہیں پوچھنا, اچھا اب شروع کر دو, کیا کہنا اب شروع کر دو. تو اللہ کرے کہ ہماری اس طرح یاد دینے سے گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے گی, اور ہمارے 2.5 گھنٹے میں ہم جن کے پاس جائیں مضبوط تعلیم کی بات کریں, اور اگر نماز کے بعد تعلیم ہو رہی ہے ہم کو نظر آئے تو ہاتھ ہاتھ دے لو بھائی دیکھو ماشاء اللہ تعلیم کا عمل ہو رہا ہے, تو تعلیم کا عمل بڑھے گا اور گھروں میں بھی تعلیم شروع ہو جائے گی. اس میں ہدف بناؤ, ہدف بناؤ گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کہ آئندہ اجتماع تک ہم اپنے مسجد کے اطراف میں 100% تعلیم شروع کروائیں گے, ہے نا؟ بہت اچھا. اور یہ گشتوں کا جو بھائی نے سنایا اچھی بات سنائی کہ جب حملہ ہوتا ہے تو ہم 100% کور کر لیتے ہیں, اور حملہ نہیں ہوتا تو 2-3 ہفتے لگتے ہیں. نہیں بھائی اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ ہر ہفتے ہمارا حملہ ہو, اور ہر ہفتے کے حملے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پتا ہے؟ بھائی نے ایک بات سنائی کہ ہم جس دن گشت ہوتا ہے اس دن جوڑیاں جو ہماری جاتی ہے گشت کی فکر کرتی ہے, نہ یہ نہیں. بھائی سن رہے ہو؟ آپ تو باہر دیکھ رہے تھے, سنا چشمے والے نے, کان بھی بند ہے, ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے, چشمہ بھی لگا ہوا, باہر بھی دیکھ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا تھا, آپ گشت کے دن محنت کرو گے تو یہ کچی محنت ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, مگر تو کیا کرنا ہے, روز اس کو محنت میں لو. جب تم 2.5 گھنٹے لگاؤ نا تو جن لوگوں سے بات کرو ایسے سارے عمل کی بات کر کے گشت کی بھی بات کرو. کس کی بات کرو؟ گشت کی بات کرو ان کو, اور اس کی عظمت سمجھاؤ. وہ کہے کہ میں انشاءاللہ گشت میں آؤں گا, اس کو اپنے ڈائری میں لکھ لو, اور جس دن گشت کا دن ہو تو جتنوں نے ارادے کیے تھے سب کو یاد دلانے چلے جاؤ, ابراہیم بھائی خیریت طبیعت ٹھیک, وہ آج گشت کا دن ہے, ہم اس دن آپ کے پاس نہیں آئے تھے, آپ نے کہا گشت میں آؤں گا, آج گشت کا دن ہے. پھر دوسرا اسماعیل بھائی, ہم اس دن آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے کہا تھا گشت میں آؤں گا, آج گشت کا دن ہے. آپ کی ملاقاتوں میں 10 نیت کی تھی, ان 10 کو آپ کی جوڑی یاد دلا دے, اس جوڑی نے 10 ملاقاتیں کی تھی اس میں 10 نیت کی تھی 10, جتنی جوڑیوں نے ملاقاتیں کی ہے جتنوں نے یاد دلایا, اگر ہر جوڑی اس طرح یاد دلا دے گی تو سچ بتاؤ حملہ بڑھے گا کہ کم رہے گا؟ ارے بھائی بولو تو کرے, بڑھے گا. ہم محنت نہیں کرتے تو اس لیے اس کو روزانہ کی محنت میں لو, اور پورے ہفتے میں جتنے یاد دلا دیں ان کو گشت کے دن یاد دلا دو, کرو گے اس کی فکر انشاءاللہ. اور یہ درمیانی جو بات ہوتی ہے نا وہ زبردست بات ہوتی ہے ذہن بنانے کی, اس میں قصہ کہانی یا ٹائم پاس کرنے کے لیے آدمی کو نہ بٹھائے, اس میں ہم اچھے مضبوط آدمی کو بٹھا کر مضبوط بات کریں. اور ہم گشتوں میں کوشش کریں کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو 10 آدمیوں کی جماعت بھیجو. کتنے مولانا اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ گشتوں میں اگر عذر نہیں ہے تو 10-10 آدمیوں کی جماعت بھیجو, 7 کر لو 8 کر لو 4 کی 5 کی, یہ نہیں, یہ ہم نے اپنی عقل سے کیا. ہاں کسی جگہ جماعت کو بھیجنے میں ہر اپائنٹمنٹ کیا ہوتا ہے اپائنٹمنٹ, وہ کہتے تنگ ہوتے ہیں یا بازار تنگ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہاں چھوٹی سی جماعت چلی گئی, دوسرے نیچے کھڑے رہے, 2-3 اوپر چلے گئے تو ٹھیک ہے, جہاں گنجائش ہے وہاں تو 10 کی ہی جماعت بھیجو, کرو گے اس کی فکر. اور یہ جو میں نے سنایا دوسرے گشت کا, آپ نے زونوں کی جماعت میں کل نہیں تھا لیکن پورے ضلع میں سب جگہ سنتے ہوئے آئے, 10 سال ہو گئے ابھی ہمارا بنجر آباد نہیں ہوا ہے. آپ کے یہاں بھی کتنے دیہات ہیں سب ملا کر غیر آباد علاقے کتنے ہیں آپ کے ضلع کے؟ 33 ہے, اور 10 سال میں اس میں سے کتنے آباد ہو گئے؟ یا ابھی 33 ہے, ابھی 10 سال میں خالی 7 آباد ہوئے, یہ کہہ رہے ہیں 33 ہے 33, آپ کے تو بہت چھوٹے ہیں. دوسرے ضلعوں میں تو بھرمار ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں مسلمان, اور وہاں کوئی ہے نہیں پوچھتا, آپ کے وہاں تو بہت تھوڑا ہے. آپ کے ضلع کے کچھ مسلمان 5-1 ہزار ہیں, کتنے شاید وہ باہر کے جو مزدور وغیرہ ہیں وہ ملا کر, جی 14 ہزار. اکھے ضلع میں کتنے ہیں؟ ارے نہیں بھائی تمہاری گڑی میں بولے مسلمان ٹوٹل مرد عورت بچے سب ملا کر, یہ کہہ رہے ہیں مرد عورت بچے سب ملا کر, جی ارے نہیں بھائی اس سے زیادہ نہیں ہوں گے, آپ سروے کر لینا. آپ کے ضلع کی آبادی سب سے چھوٹی ہے, آپ کے ضلع کی آبادی سب پورے ضلع کے 14 ہزار مکان, تو 14 28, ہاں تو مجھے یہی اندازہ ہے کہ تمہارا ضلع میں مسلمانوں کی تعداد بہت چھوٹے گاؤں جتنی ہے. ہمارے گودرے میں اب کے گودرے میں 36 ہزار ووٹ ہے, اس میں اور جتنی کمیونٹیز ہیں وہ مسلمانوں کے نام کی, وہ سب
तो अक्का एक गांव जितना तुम्हारा जिला है यह है जितना, आप उसको मदीने जैसा बनाना चाहो तो आराम से बन जाएगा, छोटा ही है। अगर उसको तुम आइडियल बनाना चाहो कि कोई अगर कहे ना उदाहरण सैंपल, तो व्हाट से कह सके कि कोई मदीने वाला मुआशरा देखना चाहिए तो हमारा जिला नवसारी है, इतना छोटा है। अगर आप हदफ बना लो 33 खाली बस्तियां, हमारा कालो लालोल पट्टी पर 120 गामड़े हैं खाली एक पट्टी पर, और तुम्हारे अखे जिले की कुल 33 कितने, तो छोटा ही है। अभी तक आबाद नहीं हुआ, 10 साल में 7 देहात आबाद हुए। क्यों? हमने उन देहातों को टारगेट नहीं बनाया, और ये हमारे देहात बहुत काबिले रहम है। हमारे माँ इब्राहिम साहब कहते हैं देहात वाले शहर वालों से ज्यादा काबिले रहम है। क्यों? कि इनके उनके दीन के छोड़ने के असबाब उनके पास ज्यादा है, कि दीन जिन चीजों से छूट जाता है वो चीजें वहां ज्यादा है। उसमें एक बड़ी चीज जहालत है, देहात वालों में जहालत है, जहालत की वजह से आदमी दीन छोड़ देता है। और दूसरा, अक्सर देहात वाले गरीब लोग होते हैं, गरीबी भी आदमी को दीन छोड़वा देती है। किताबों में आता है एक आदमी फक्र उसको कुफर की तरफ ले जाता है। अगर ऐसे देहातों की हमने फिक्र नहीं की तो फिर जो जाकर उनकी फिक्र करेगा वो ऐसे ही हो जाएंगे। उन देहातों को उन मोहल्लों को कवर करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर ये हमारा मजमा तय कर लेना तो उन दो रास्तों से पूरे देहात को हम बदल सकते हैं। वो क्या दो रास्ते हैं? एक हमारा दूसरा गश्त और एक हमारे महीने की 3 दिन की जमात। अगर ये तीन दोनों चीजें निशाने पर लग जाएं तो इंशाल्लाह ये देहात और हमारे मोहल्ले बंजर से निकल जाएंगे। कैसे? कि हमारे अतराफ के जो मोहल्ले हैं उसको दूसरे गश्त के जरिए से कवर करो, और जो हमारे जिले के देहात हैं उन देहातों को 3 दिन के जरिए से कवर करो। ऐसी मस्जिदों में जाना बंद कर दो, बिल्कुल भूल जाओ। जिन मस्जिदों में मस्जिदवार जमात मौजूद है, अपने पैरों पर खड़ी है। अब मान लो दूसरे गश्त के लिए आप गए ऐसी मस्जिद में जिस मस्जिद में मस्जिद और जमात मौजूद है, वहां 12 आदमी है और आप 12 चले गए, तो क्या करोगे? आप उनके साथ शरीक हो जाओगे, तो उससे उस मस्जिद को ताकत नहीं पहुंचेगी ना आपको पहुंचेगी। और अगर आप ऐसी बस्ती लेते हैं जहां कुछ नहीं है, हमारे हजरत कहते हैं जहां कुछ नहीं है वहां दूसरे गश्त के जरिए से आप क्या करो? उसको दूसरा गश्त ना समझो। आपकी नियत में ये होना चाहिए कि हमें इस गश्त के जरिए से उस बस्ती को खड़ा कर देना है। अब खड़ा करने के लिए खाली गश्त में जाने से काम नहीं होगा, तो फिर पूरा उस मोहल्ले को ऐसे मेहनत का मैदान बना लो जैसे अपनी मस्जिद का तुमने मोहल्ले लिए है। 4 मोहल्ले थे, ये 5वां मोहल्ला, 5 थे ये 6ठा मोहल्ला, 6 थे ये 7वां मोहल्ला। और जैसे रोजाना 2.5 घंटे अपने मोहल्लों में लगाते हो, 2 साथी तय कर लो इस अठौड़िए में 2 साथी वहां कौन जाएंगे, या 15 दिन तक ये साथी 2 साथी कौन, रोजाना 2.5 घंटे वो वहां लगाए, रोज 2.5 घंटे वहां लगे। अब आप बताओ एक अठौड़िए तक हमारे 2 साथी गए और 2.5 घंटे वहां लगाए, अब एक अठौड़िए में 2.5 घंटे में रोज 2-4 मुलाकात कर रहे हैं, एक अठौड़िए में 40-50-60 मुलाकातें हो जाएगी। जब एक अठवाड़े में कंटिन्यू 50-60 मुलाकातें हुई, अब जब उस मस्जिद में दूसरे गश्त के लिए साथी जाएंगे, तो सच बताओ ये 40-50 दिन से मुलाकात हुई है, उनका साथ सहकार गश्त में मिलेगा या नहीं मिलेगा? अल्लाह बोलो तो खरे, मिलेगा। हो सकता है कि हमारे साथियों की मुलाकात से खाली गश्त के साथ सहकार वाले नहीं, उन्होंने उनकी मेहनत से कुछ लोग 3 दिन के लिए भी तैयार हो गए हों। अगर मान लो 3 दिन के लिए तैयार हो गए, जमात बन गई, तो हम अपने वहां से अमीर देकर जमात भेज देंगे। अब हमारे साथी को 3 दिन उनको समझाने का मौका मिलेगा। अब ये अगर जमात 3 दिन की आई, अब आइंदा हफ्ते तक हम रोज हमारे साथी मिलने जाएंगे, ये 3 दिन लगाए हुए उनके मददगार बनेंगे, तो साथ सहकार मिलेगा। फिर उनको अपने वहां गश्त में बुलाओ, हम उनके वहां जाए, उस मस्जिद वालों को अपने वहां बुलाओ, तो अठवाड़ी में तुम्हारी 2 मुलाकातें हो जाएगी। और वहां से नकद तश्कीलें करो भाई, अफराद मिले तफरत, इस तरह तुम एक अठवाड़िया, दूसरा अठवाड़िया, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 आपकी क्या रहे, कंटिन्यू इस तरह अगर 8 अठवाड़ियों तक मेहनत हो जाए तो उस मस्जिद में कुछ जान पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? अरे बोलो तो खरे। लेकिन कब? जब रोजाना जाओ तो। और अगर रोजाना ना जाओ, खाली गश गश के दिन जाओ, तो 2 महीने नहीं 2 साल भी करोगे तो कुछ भी नहीं, 0 का 0 रहेगा। आपका टारगेट ये हो कि हमें 2 महीने में इसको उठा देनी है, उसके लिए आपका दूसरा गश्त है। आप अपने जिम्मेदारों से कहो कि हमको दूसरा गश्त, हम उस मस्जिद में नहीं जाते जहां मस्जिदवार जमात बनी हुई है, और दूसरे 3 दिन की जमात है। आपके महीने की कितनी जाती है 3 दिन की जमात एवरेज जिले की? 45 भाई, 45 चलो 45 गिनो, ऐसी 33 बस्तियां हैं, ठीक है? उन 33 बस्तियों में
अगर एक एक जमात चली जाए तो 30-33 जमातें वहां हो जाएगी, और अगर डबल जमातें हो जाए तुम्हारी तो अगर सारे जिम्मेदारों की जमातें बने तो कितनी जमात, एकदम तुम्हारा काम ऊपर जाएगा। हर जिले गांव में ऐसे गांव में दो दो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां ठहरने की जगह ना होगी तो हम ये कहते हैं हर मस्जिद टेंट बना ले। क्या बना ले? हम 10 साल में अभी इन बंजर को आबाद नहीं कर सके तो टेंट बना ले, हर मस्जिद टेंट बना ले, टेंट बनाकर इन देहातों में पड़ाव डाल दें। दुनिया भर के लोग पता नहीं कहां कहां जाते हैं और एक एक ईमान वाले तक पहुंच रहे हैं, एक एक ईमान वाले तक। और आप देखो अजला में क्या क्या मेहनत नहीं हो रही है, अगर हमारी करने की मेहनत नहीं होगी तो न करने वाले पहुंच जाएंगे, और हमारी मौजूदगी में ईमान वाला दुनिया से इसी तरह चला जाए हम इस पर कैसे राजी होंगे। एक ईमान वाला दुनिया से बेईमान होकर जाए ये बड़े दुख की बात है। हम अपने दिन दिन की ताकत को ठिकाने पर लगाएं। हम मस्जिद के शहरों की मस्जिद में चले गए, हमारा इकराम हुआ, गश्त किया, दिन दिन फरोग आ गए, क्या पाया क्या कुछ नहीं। और अगर इन देहातों में गए इस उम्मत का दुख दर्द आएगा। वहां ऐसा फरमाते हैं गरीबों को अपनी मेहनत का मैदान बनाओ, गरीबों में तुम्हें अल्लाह मिलेगा। तुम किसको लेने जाते हो जमातों में? जहां अल्लाह मिलता है वहां हम जाते नहीं है, गरीबों में अल्लाह मिलता है। इसलिए तय कर लो इंशाल्लाह दूसरा गश्त और 3 दिन इंशाल्लाह आबाद जगहों पर नहीं जाएंगे, बंजर जगहों पर जाएंगे। आपको कौन मिलेगा? अल्लाह। थोड़ा सा मुजाहिदा होगा, थोड़ा सा होगा। मैंने शुरू में बताया कि ये बंजर जमाते गई तो कल ही मैंने बताया था कि अहमदाबाद की जमात के कर्जदारी पैदल चली बंजर में गई, वो थोड़े दिन की मशक्कत थी। मशक्कत से ना घबराओ, मशक्कत थोड़े दिन की है, अजर बड़ा। एक शायर क्या कहता है पता है, मशक्कत से डरने वालों के लिए कि लज्जत के शौक में गुनाह न करो। अक्सर आदमी गुनाह करते हैं लज्जत के लिए, तो क्या कहा, लज्जत के शौक। एक लड़की सामने से जा रही है, मजा आ गया देखने में, तो मेरी थोड़ी हो जाएगी वो, तो मैंने जितनी लज्जत ली उसका गुना जिना का मेरे ऊपर हो गया, आंखों का जिना। तो शायद क्या कहता है, लज्जत के शौक में गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा। ये तो हो गया, जो मुझे सुनाना है वो दूसरा है। वो क्या है, मशक्कत के खौफ से नेकी न छोड़, मशक्कत के खौफ से, मशक्कत जाती रहेगी नेकी बाकी रहेगी। ये जितने सालों की जमातें जाकर आ गई उनकी मशक्कत खत्म हो गई, मगर उनकी नेकियां ओ हो हो हो, अल्लाह के नाम पर यूं ही फिर रहा इतना भारी, फिर उसके बाद सोनों में फिर रहा, पैदल फिर रहा, वो उनका खत्म हो गया, मगर जो उसका अजर हो गया उसको कौन ले सकता है। अब वो हम लेना भी चाहे तो हम नहीं ला सकते, क्योंकि जौनों की जमात आइंदा साल चलेगी, पता नहीं आइंदा साल तक जिंदा रहे कि नहीं रहे, तो आदमी डरा देता है। तो शायर कहता है मशक्कत के खौफ से नेकी न छोड़, मशक्कत देखो रात को उठने में थोड़ी मशक्कत थी, मगर जो उठ गए वाह भाई उनका अल्लाह से काला वाला हो गया। रात में काला वाला करने का होता है, काला वाला पैदर पे बात करना, काला वाला पैदर पे बात करना, अल्लाह से काला वाला हो गया नहीं हो गया। और जिन्होंने सुस्ती की उनका रह गया, आज की रात कयामत तक दोबारा लौट कर नहीं आएगी। मशक्कत के खौफ से नेकी न छोड़, मशक्कत जाती रहेगी नेकी। इसलिए तय कर लो कि मशक्कत से डरेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे? अल्लामा इकबाल कहते हैं हमें फख्र है उन जवानों पर जो डालते हैं अपनी कमंदे आसमानों पर। जानते हो ये क्या मैंने पढ़ा, खाली गर्दन ही ला दिया ना। कमंद कहते हैं वो पहाड़ों को पकड़कर चढ़ने वाले होते हैं, रस्सियां पकड़कर चढ़ते हैं, वो ऊपर बिल्ली लगाते हैं, वो ऊपर यूं डालते हैं तो अंदर फंस जाती है, पहाड़ को पकड़ती है, फिर चढ़ने वाला उसको यूं पकड़ के चढ़ता है, क्योंकि ऊपर पकड़ लिया उस बिल्ली ने, तो उसको गुजराती में बिल्ली बोलते हैं और उर्दू में उसको कमंद बोलते हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कैसे जोरदार जवान है जो अपनी कमंद डालते हैं, कोई 1 फुट पर, कोई 2 फुट पर, कोई 3 फुट पर, कोई 10 फुट का, कहा में फख्र है उन जवानों पर जो डालते हैं अपनी कमंदे आसमानों पर। ये जितने भी ऊंची प्रवास करे राजी नहीं होते, हमें और आगे जाना है, हमें और आगे जाना है। कहां तक जाना है? आसमानों तक। वो जो डालते हैं अपनी कमंदे, तो आप तय कर दो कि हम अपनी कमंदे ऐसी डालेंगे इंशाल्लाह, डालोगे इंशाल्लाह, बड़ी आखिरत बना कर जाना है, छोटी पर हम राजी नहीं है। कौन कौन छोटी पर राजी है? तो बड़ी बनाओगे इंशाल्लाह, तो किस में जाओगे? बड़ी अपनी कमंद ऊपर डालनी है। इसके लिए कसमापुर से लोगों को मेहनत का मैदान बनाओ, अल्लाह मिल जाएगा। तो जाओगे 3-3 दिन इंशाल्लाह, बस नियत कर लो टेंट बना कर जाएंगे, हर मस्जिद वाले टेंट बना लेना, हल्के का टेंट नहीं। किसका बोलो? कौन कौन मस्जिद वाले बनाएंगे, अरे कौन कौन बनाएंगे, ठीक है, और उस कौन से मस्जिद में हम तीन दिन नहीं जाएंगे। ओ बुजुर्गान अज़ीम जो है सुनिए, कौन सी मस्जिद में नहीं जाओगे तीन दिन, जहाँ मस्जिदवार जमात मौजूद है वहाँ तीन दिन, दूसरा कहाँ नहीं जाएंगे, दूसरा गश्त कहाँ नहीं करेंगे। अरे बोलो, ओ भाई अच्छा अच्छा, दूसरा गश्त कहाँ नहीं करेंगे, जहाँ मस्जिदवार जमात मौजूद है वहाँ इंशाल्लाह एक साल में तुम्हारा हैदराबाद आबाद हो जाए। आप तो टारगेट बना लो, हमारे सूबे का सबसे छोटी कम आबादी वाला जिला वो नवसारी है, अगर वो तय कर। साथी पड़े रहेंगे, तीन दिन लगाएंगे लेकिन वो बनकर नहीं आएंगे, और अगर उनको काम दिया तो वो काम करेंगे, करोगे इंशाल्लाह। एक मास्टर साहब अभी हमारे साथ थे पिछले 20 दिनों में, आपके करीब के जिले के, वो कहते थे कि मेरी क्लास में मैं उनको काम देता था बच्चों को, तो हमारे दूसरी क्लासों के टीचर सुबह सुबह क्लास खुलते ही आ जाते थे, उनके छोकरे नहीं आते थे, और मैं एक घंटा लेट पहुंचता था, मेरे छोकरे मेरे से पहले आते थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों, कि मैं इनको इतना काम देता था कि उनको आना ही पड़े, तो उस्ताद नहीं है मगर छोकरे हैं, और जो काम नहीं देते थे वहां उस्ताद है मगर, अरे बोलो, छोकरे नहीं है। तो काम देने से नफा होता है, आप काम दो इन साथियों को तो वहां से नफरत जमाते बनेगी, हमारे साथी मशगूल रहेंगे, और बेकारी गुनाहों का दरवाजा है, अगर साथी बेकार रहे तो गुनाह करेंगे। अब देख लो तीन दिन में क्या होता है, लाया नहीं होगी उनको मस्जिदवार जमात पर, नकद जमात बनाने पर डाल दो तो उस बस्ती में से नकद जमात बनेगी, हमारे साथी मशगूल हो जाएंगे, तो नियत करते हो हर बस्ती से हम नकद जमात लाएंगे, उसकी मेहनत करनी पड़ती। एक जमात आई, मैंने उसकी कर्जदारी पूछी कि कितनी जमातें बनाई, 70 जमातें हमने चिल्ले में बनाई, और एक और 11 जमातें हमने चिल्ले के बनाई। ये अभी हमारे मौली साहब जाकर आए, मौल साहब आपने कितनी जमात बनाई थी, 90 जमातें वसूल की इन्होंने, 90 जमातें इन्होंने वसूल की, ये 4 महीने में गए थे, नहीं वो जमातें वसूल की इन्होंने, वो तो हरकत करना पड़ता है, बटन दबाने से थोड़ी जमात मिल जाएगी, उसके लिए करना पड़ता है। तो अपनी नकद जमात हर बस्ते से बनाओ, इसके लिए रवानगी की बात मजबूत, कर्जदारी मजबूत, भर के भेजो, करोगे इंशाल्लाह, और सुबह से जल्दी जमात जाने की फिक्र करो तो इंशाल्लाह सारा काम, मार्का अच्छा हो जाना चाहिए, मार्को अच्छी होती जाए तो जान भी अच्छी बनी जाए, ठीक है इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा इसकी फिक्र, और जमात को जल्दी भेजो, सुबह में जल्दी जमात जानी चाहिए, उसके लिए जब तुम तशकीबा में जाओ तभी कह दो भाई हम फजर में जाएंगे, भाई हम फजर में जाएंगे, भाई हम, और जिम्मेदार फजर में बैग लेकर आ जाए, अक्सर जमात इसलिए लेट जाती है, एक फजर का बिस्तर जिम्मेदार का लेट आता है, बोलो यही बात है कि गलत। इसमें से जो जिम्मेदार फजर में सामान लेकर आता है वो जरा उठाए, जो जिम्मेदार फजर में अपना तीन दिन का सामान लेकर आते हैं, आपकी जमात कितने बजे जाती है भाई, और साथी 8 बजे, और अब
देखो इतने बड़े मजमे में आठ साथी भी हाथ नहीं उठाए जो फजर में सामान लेकर आते हो। जब अल्लाह ही के लिए देना है तो बोलो अच्छा तोलना चाहिए या गलत। जब अल्लाह ही के लिए देना है तो उसको कैसा करना चाहिए? अच्छा करोगे आप? अब कौन फजर में सामान लेकर आएगा? और जिसकी तश्किल करो उसको भी फजर में आने के बाद, ठीक है इंशाल्लाह। चलो अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह कबूल फरमावे। अब आखिरी बात यह है कि इस पैगाम को लेकर इंशाल्लाह नवसारी में मर नहीं जाना का, फिर का इस पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में फिरना है। कहाँ फिरना है बोलो? अरे शायद बोल लो, पूरी दुनिया में। हम आलमी नबी के आलमी उम्मती है। हम कैसे उम्मतियाँ बोलो? मौलाना शरमुद्दीन अलग एक मैं बयान पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा जो आज नबियों में तीन किस्म के लोग आए, एक खानदानों के नबी आए, एक इलाकों के नबी आए, और हमारे नबी आलमी नबी आए। ये फरमाते थे जो आदमी खानदान का बनकर रह जाएगा उसकी अल्लाह मदद करेंगे, ऐसे नबी जैसे जैसे खानदान वाला आया था, और जो आदमी इलाके वाले की मेहनत की नियत के जिएगा अल्लाह उसकी ऐसी मदद करेंगे जैसे इलाके वाले नबी की मदद हुई, और जो खातमुन नबीयीन वाली नियत करेगा आलमी तो उसकी मदद भी आलमी की जाएगी। ये मदद नियतों पर होती है। तो हम सब नियत कर लें, हम बनी इसराइल के आदमी नहीं है, हम तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आदमी हैं, तो हम इलाके के भी नहीं, खानदान के भी नहीं, हम आलम के हैं। आज अपनी नियतों को वसी कर लें कि हम इंशाल्लाह आलम के लिए जिएंगे। सब नियत करते हो? किसने किसने नियत की? अच्छा, आलम की नियत करने के बाद क्या होता है पता है? क्या पता है? अगर आपने आलम की नियत कर ली तो फिर अल्लाह पाक, अगर आपकी नियत है तो जब तश्कीलें हो तो उस वक्त अल्लाह पर नजर करने की कि अल्लाह पाक आलम के लिए मैं नियत करता हूँ, मेरे मुकद्दर में जहाँ हो खैर वहाँ अल्लाह मुझे पहुँचा दे, तो फिर अल्लाह पाक पहुँचने के असबाब पैदा करेंगे। हमारे दोस्त थे मुफ्ती साहब यूपी के, मैंने उनको देखा बहुत गरीब आदमी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। मैंने कहा या अल्लाह ये कैसा आदमी है? मैंने उनको पूछा मुफ्ती साहब आप यहाँ सब जगह कैसे पहुँच जाते हो? कहा मान साहब मेरे पास तो कोई शक्ल नहीं है, जरिया माश मेरा कमजोर है, लेकिन जहाँ मैं तश्किल सुनता हूँ और मुझे कोई कहता है तुम्हें यहाँ जाना है, मैं कहता हूँ ठीक है इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता मेरा अल्लाह मेरा कैसे इंतजाम करता है, मैं उन सारी जगहों पर पहुँचता हूँ जहाँ की मैं नियत करता हूँ। मैंने कहा तुम नहीं पहुँचते हो, वो अंदर 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 जो तुम्हारी पुख्तगी है, नियत की पुख्तगी, अंदर के असरात। हज़रत शेख ने वाकया लिखा, वो सबकी बकरियां चरागाह में चरने गई, जब वापस लौटी तो अम्मा की जो एक बकरी थी एक आंचड़ में से दूध निकलता था और दूसरे में से शहद निकलता है। लोगों ने अम्मा से पूछा अम्मा जी ये कौन सी चरागाह में बकरी चरती है, हमारी तो खाली दूध देती है, तुम्हारे तो शहद भी देती है। क्या कहा? ये इस चरागाह में चरती है। कौन सी चरागाह में बोलो? इस दिलों में चरती है। ये दिल को अल्लाह के साथ साफ कर दो। इन तकाजे जब आए ना तो अपनी तश्किल से अपने आप को न बचाओ। तश्किल में वही खड़ा हो सकता है जिसका विश्वास अपने रब पर मजबूत हो। अगर विश्वास कमजोर है वो खड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कोई खड़ा ना हो तो ये समझ लो ये अल्लाह के साथ मेरे यकीन में कमजोरी है। इसलिए आप तो तय कर लो कि हम अपने रब के साथ यकीन में कोई कमजोरी नहीं करेंगे। सब तय करते हो भाई तो तय कर लो। इसमें से जो साथी दो महीने चार महीने लग गए हैं दो मरतबा और मकामी अमल में जोड़ते हैं वो तो तय कर लो। अगर हजरत हमारा तय करेंगे तो हम इंशाल्लाह 2024 में अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया के जिस कोने में भेजेंगे हम जाएंगे। जाओगे इंशाल्लाह? कौन कौन अपने रब की बुनियाद पर तय करता है? अपने बुनियाद पर जो तय करता है वो ना करें, और जो अपने रब की बुनियाद पर कहता है वो जरा हाथ उठाए कि 2024 में अगर मेरे अल्लाह ने चाहा और मेरी कोई तश्किल हजरत ने की मैं पूरी दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर फिरूंगा जाऊंगा। और कब तक? कब तक? मौत तक। कब तक बोलो? तो कौन कौन जाएगा 2024 में बैरून? खड़े भी हो जाओ, चलो खड़े भी हो, जल्दी 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 अल्लाह को अपने इरादे बता दो, अल्लाह को अपने इरादे बताओ। हमारा मुन्ना भी खड़ा हो गया, मुन्ना का बाबा भी खड़ा हो गया। लो जी, अल्लाह मुन्ने को भी कबूल फरमाए, मुन्ने के अब्बा को भी अल्लाह कबूल फरमाए। वाह 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 वाह, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। हुजूर ने तश्किल की तो बच्चा पैरों पर खड़ा हो गया। क्यों ऐसा करता है? मैं छोटा ना दिखूं? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, दरवाजे पर जाने वालों, ओ लाल कोटी वालों, ऐसा ना करो, आ जाओ, अल्लाह तुम्हें सबर पर बदला देगा, आ जाओ। इतने जोरदार प्यारे आदमी, बुजुर्ग आदमी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको शैतान उठा लेकर जाएगा, हम शैतान के हाथ में जाने नहीं देंगे आपको। शैतान वहाँ पकड़ेगा, हम यहाँ पकड़ेंगे।
हम जाने नहीं देंगे आपको, इतना सस्ते थोड़ी है शैतान को दे देंगे आपको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जोरदार अल्लाह जजाए खैर, और खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ, आप उस कोने में चले जाओ, आप सब उस कोने में जाओ भाई, आप उस कोने में जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। ओ भाई भाई वो जवान देखो जेब में हाथ डालकर जा रहा है, शैतान जैसा